यह मेधा बुद्धि एक भावना से भी संबंधित है। मनुष्य विषय को नहीं समझता है, वो समझता है कि इसको मेधा चाहिए तो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो इसको ऐसा ना समझा जाए कि ये मंत्र पाठ है, ये एक मंत्र पाठ का एक विज्ञान है, एक भावना है जो वहाँ तक मन को लेके जाएगी और मेधा का जो क्षेत्रबंध है वो उद्घाटित हो। प्रार्थना हमेशा सत्य होती है, मिथ्या नहीं होती। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। भवतामत्र सर्वेषां एकदा पुनः स्वागतम्। अस्माभिः चर्चा चर्चिता ते अनेके के विषयाः तत्र आसन् इति उच्यतां। जयदेव महोदय। पंचमाध्याय प्रथम किम आसीत्? तस्य को अर्थ सस्निम मंत्र किम आसीत्? हाँ, चरणे नदी नाम ससनी नाम मेघ। अन्य अंध अंध की मासित विक्रम महोदय कथम? एवं निर्वचनम न स्यात्। कस्य महोदय अन्नम अंध कस्मात्? अन्य गौतम महोदय अंध कस्मात्? कथम अन्य किम उक्तम? कथम ना? तो सत्यम केन जातम अंध कस्मात्? आम तमोपि अयमपि अंध एतस्मादेव। अयमपि अंध मनुष्य एतस्मादेव कस्मात्? पश्यन् अपि न पश्यति स अपि अंधोच्यते। अन्य तत्र आसीत् हेमंतः। हेमंतः कस्मात्? कार्यं कथं चलिष्यति यदि हेमंतमपि न जानाति ग्रीष्ममपि न जानाति? हिमवान अस्य को अर्थ? पूर्व तो सात हिमवान हंतेरवा हिनोतेरवा। तो हंते और हिनोते उभयो को भेद है? बलदेव महोदय हंते और हिनोते उभयो को भेद है? कथम कार्यम चलिष्यति यदि इदानीमेव न उपबुध्यते पश्चात् कथम्? श्रीधर महोदय हन्ते हिनोतेर को भेद है? पुनः चक्रम स्यात्। रसान हिनोति तर्पयति शरीरम अन्य तस्मिन् काले ये यानि यानि सस्यानि भवन्ति। अस्तु तर्हि ग्रीष्म कस्मात् ग्रस्यन्ति अस्मिन् रतस्य को अर्थ देखा ना, रटा रटा है का क्या काम आता है, जिसमें व्यक्ति ग्रसित हो जाता है मतलब दुखी हो जाता है। ऐसे निर्वचन मतलब मैं वही तो कहता हूँ, रट्टा काम नहीं आता ना, आगे पूछते ही समाप्त हो जाता है रट्टा। कस्य मोदय ग्रस्यते अस्मिन् रस को अर्थ है अस्मिन् रस ग्रस्यते के आदित्य, आदित्य जो है रसों को खींच लेता है, इसलिए औषधि सारी सस्य श्यामला भूमि क्या हो जाती है, तो इसलिए वो है। संवत्सर अकस्मात भोग संवत्सर अस्मिन् के वसन्ति भूतानि नाम है। तो षष्टिश्च है वही त्रीणि च संवत्सरस्य अहोरात्र, अस्य को अर्थ है षष्टिश्च है वही त्रीणिश्च संवत्सरस्य अहोरात्र, अस्य को अर्थ है को अर्थ अस्य वाक्य से षष्टिश्च है वही त्रीणि च शतानि संवत्सरस्य अहोरात्र, अस्य वाक्यस्य को अर्थ है रात दिन अहोरात्र का क्या अर्थ है, अर्थात रात और दिन दोनों मिला के 360 होते हैं, और यदि ये 360 को गुणा कर दिया जाए अलग अलग मान लिया जाए तब कितने होंगे, ये भी आएगा आगे ध्यान रखना, इसलिए मैंने पूछा। कहीं कहीं आएगा कि 720 जो है ना, 720 को संस्कृत में कैसे बोलेंगे, इनकी भाषा में बोलिए, हिंदी भाषा छोड़िए, अब च संवत्सरस्य अहोरात्र ये भी आएगा, फिर आगे और भी आता है, फिर और भी आता है, ऐसे बहुत बढ़ता रहता है। तो अग्नि देवताओं का अग्नि ही देवानाम दूते आसीत, केन हेतु न अग्नि देवानाम दूते वर्तते, कोस्य अर्थ है जु सोत्रो धातु वर्तते, ऊति युति ज्योति साति पाणिनिना न पठितम, तो तत्र गत्यर्थे वर्तते, तो विशेष जवनम मतलब वेग युक्ता गति, जवती नाम है वेग युक्ता गति, सामान्य गति न वर्तते, तो शीघ्रमेव गच्छति। अग्रे अद्य तत्र किम् आसीत्, नरा तो अभूत, भूरी धारे और पयस्वती, हाँ तो अशश्चन्ति नाम असज्यमाने अर्थात न सज्यमाने, षष्ठंती नाम षष्ठ कस्मिन् अर्थे धातु वर्तते संगे, तो न षष्ठंती नाम संगतम भवन्ति और न षष्ठंती नाम संगतम अकुर्वन्ति। भूरी धारे, भूरी धारे नाम भूरी धारा ययो ता भूरी धारे, ये सारे द्विवचन हैं,
अश्विनी कुमार विषय चर्चा करते थे
अश्विनी कुमार वर्तते उषा वा वर्तते पयस्वती और पयस्वती नाम है पय तद्वान इति पयस्वती। तो अत्र किं वर्तते भूरी धारा वर्तते लो मात्रम ददातु उपरी तो भूरी धारे अत्यधिक वृष्टि धारा भूरी धारा ययो तो भूरी धारा है जिनकी तो या ता भूरी धारे दोनों हो सकते हैं वो कौन से बाद में देखेंगे और कभी न मिलते हुए और पयस्वती पयस्वती नाम है पय तद्वान पयस्वती अर्थात तत्र पय कुत्र पठितम अन्य नाम सो अपि पठितम पय जल नाम सो अपि पठितम तो अन्नम अत्र तो जलमेव स्यात् तो कौ तो अश्विनौ वा अन्य किमपि तो द्यावा पृथ्वी अश्विनी मित्र वरुणे इंद्राग्नि इत्यादि भवतु मरन्ति द्विवचनेन एवमेव भवति। तो अत्र किं स्यात् द्यावा पृथ्वी एव स्यात् क्योंकि परस्परं मेलनं न वर्तते अत्रापि भूरी धारा वर्तते तत्रापि भूरी धारा वर्तते अत्रापि पय वर्तते तत्रापि पय वर्तते तो द्यावा पृथ्वी एव स्तः तो द्यावा पृथ्वी नाम असश्चन्ति परस्परं सम्मेलनं न कुर्वन्ति भूरी धारे अपि स्तः और पयस्वती अपि स्तः परस्परं बाधाम अकुर्वन् किं कुर्वन्ति गच्छन्ति जानन्ति जापयन्ति इति वा किं पयोदकं नाम न पठितं तु पठितव्यं न वर्तते कुत्रापि नीचे पश्यतु पय तु वर्तते वेदे पुनर्पुनर् आगच्छति पय उदक नाम नास्ति तो मन्यतां कि इदानीं लुप्तः पूर्वमासीत् यदि वेदे पय नामना जलस्य पुनर्पुनर् आगच्छति यथा किं वर्तते करन्ति स्यात् कुर्वन्ति वा व्याकरण अनुसारेण करन्ति स्यात् कुर्वन्ति वा कुर्वन्ति तनादिक्रियाभ्य तनादिक्रियादिगणे पठते थे न तो भवादिगणे स्यात् तो तत्र वेदे किं वर्तते करन्ति करत् हाँ करति वेदे आगच्छति तो तस्मात् मा मन्तव्यम् एवमपि भवितुम् अर्हति सामान्य रूपेण वर्तते तो पय तद्वान पयस्वती पय तद्वान पयस्वती तो उद्गे अपि वर्तते कः वदति न वर्तते पय स्र भेषजं स सवयोज सुखं छत्रम आय शुभम यादु भूतं वर्तते एकदा अर्ण क्षोदक शदमे नभ अंब कबंदम सलीलम वामनम घृतम मधुपुरीशम पिप्पलम क्षीरम विषमृत कस्य जन्मे बर्बुकम भूषम तुग्र बर्बुरम सुक्षेमम धरुणम सिर अररिंदानी धस्मनवत जामी आयिदानि क्षत अहि अक्षरम स्रोत तृप्ति रस उदकम प्रियस्र वर्तते प्रियस्र भेजम से पय और प्रिय रेफ लुप्त किमपि स्यात् वर्तते पय मम बुद्धौ पय कथं वर्तते पय पय भेजं पय स्यात् न वर्तते अनेन न मया कण्ठीकृतं द्वितीयेन कृतं पय वर्तते वर्तते पय मम बुद्धौ अपि तिष्ठति पय श्रेय भेजं स सवयोज हाँ भाई पय पय स्यात् यह तो पय नाम है आप पुनर्वेद आगच्छति पय नाम है दुग्धम पय नाम है जलम रात्रि नाम अपि तत्र पय वर्तते हाँ अन्न नाम वर्तते तो पय अपि स्यात् तो पयस्वती नाम है अन्नवती वा जलवती वा तो असज्यमाने इति वा व्युत दस्यन्ति दस्यन्तौ होना चाहिए यहाँ तो व्युद्दस्यन्तौ इति वा तौ होना चाहिए तभी तो बनेगा व्युद्दस्यन्त्यौ यौ असज्य माने इति वा परस्परम संगतम अकुर्वाणे। अन्य द्वितीय अर्थ क्या करते हैं, व्युद्यस्यन्ति इति वै वा, व्युद्यस्यन्ति नाम कदापि अन्योन्यम अदस्यन्ति, एक दूसरे को न मिलती हुई। और दसुपक्षय कदापि क्षयनम अकुर्वन्ते, कदा भी उनका क्षय नहीं होता। दसुपक्षय भी है, उससे भी बनेगा ये। और परस्पर एक दूसरे को क्यों नहीं मारती, क्योंकि बहुत दूर है एक दूसरे से, तो एक दूसरे को न मारती हुई अथवा क्षीण न होती हुई। बहुधारे उदकवत्ते हो, बोल दिया ना पय का अर्थ उदक ही है। हाँ वही शायद मेरे दिमाग में भी वही आ रहा ना, पय पय श्रेय भेजम से किया होगा, क्योंकि प्रय शब्द तो वेद में उदक वाला नहीं आता है। नहीं, वेद में जो प्रयोग होता है ना पय का ज्यादा है। पयस्वान मंत्र में भी ना आशीर्वाद देते हैं वो, ये सारी चीजें पयस्वती हैं, हम भी पयस्वान हो जाएं, एक ऐसा आशीर्वाद है। सोम भी पयवान है, क्योंकि सोम में भी आप तत्ति मुख्य है, रश्मियों में भी आप तत्व वेद की भाषा में, तो ये भी पयवान है। सूर्य भी पयवान है, इंद्र भी पयवान, सब कुछ पयवान है, तो हम भी पयवान हो जाएं, ऐसी प्रार्थना एक मंत्र में कहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा। आगे देखें, मनुष्यति हंति कर्मा अनवगत संस्कारो भवति। मनुष्यति नाम है हंति कर्मा, हनन नाम में पड़ा हुआ है इसको। हंति कर्मा कितने हैं वेद में, हिंसा अर्थ वध कर्मा धाति हुए हैं, 46 होनी चाहिए। वनुष्यति हंति कर्मा अनवगत संस्कारो भवति, अस्य संस्कारस्य जानम न भवति कि वनुष्यति कथम हंति अर्थे वर्तते इति। तो वनुयाम है वनुष्यत, वनुयाम है ये घात कहा संति तान वयम वनुष्यत, तान घातयाम है, जो मारने वाले उनको छोड़ना नहीं है। ये किसके लिए, आपस के लिए नहीं, मंत्र अपने ऊपर मत घटा लेना, ये उनके लिए है जो पाकिस्तान वाले जैसे बता रहे हैं अभी कि 12-13 मार दिए रात रात में, वो ये बता रहे थे। तो भारतीय सेना ने रात को ऑर्डर दे दिया है, मोदी से अपेक्षाएं जनता को जाता है ना, कुछ थोड़ी देर ऑर्डर नहीं दो तो हल्ला मच जाता है। तो वनुयाम है मनुष्यत, तो जो पहले उन्होंने घोड़े चलाए फिर हमने महाघोड़े चलाए, ऐसे ही होता है फिर। तो वनुयाम है मनुष्यत, जो हमें मार रहे हैं उनको जरूर मारो, छोड़ना नहीं है, शत्रु है तो, अपना भाई है तो कुछ नहीं कहना है, कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, पीट लिया क्या हो गया, ये भी एक अनुभव हो गया, पीटने का अभी तक नहीं पीटे थे। इत्यादि निगमो बहुती, ये भी निगम होता है, ये आपस में हम सब भाई भाई हैं, आर्य लोग पढ़ने वाले सब भाई हैं, आपस में थोड़ी लड़ना, करना है तो शास्त्रार्थ करना है। परमात्मा के बच्चे वो हैं जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो परमात्मा के बच्चे नहीं है। आज्ञा पालन करते सामान्य नहीं है, यहाँ देश की बात चल रही है, आपस में क्या बिगड़ रहा है, किसी ने कुछ कह लिया तो वहां देश बिगड़ रहा है। ओम ओम दीर्घ प्रयुज्य मति यो वनुष्यति वयम जय में प्रतनासु दुढ़। और आगे बता रहे हैं यही है और बदल गया, मेरे में पता नहीं लगता, यही चल रहा है ना, वनुष्यति दीर्घ प्रयुज्यम अति यो मनुष्यति, दीर्घ प्रयुज्यम नाम प्रयुज्यम नाम है प्रकर्षण युज्यम योक्तिम योग्य, और दीर्घ होना चाहिए तो ये कुछ और है। दीर्घ प्रयुज्य नाम है दीर्घ दीर्घ रूपेण प्रततम विस्तारितम वा इति, अर्थात दीर्घ प्रयुज्यम दीर्घ यज्ञम अति यो वनुष्यति, अति क्रम्य य वनुष्यति, वनुष्यति नाम हिनस्ति वयम जय में तम शत्रु वयम जय में तस्य उपरि जयम कुरुम प्रीतनासु, प्रीतनासु नाम है संग्रामेशु, दुढ़ नाम है दुढ़ दुर्धियम दुर्कर्माणम वयम जयम, अर्थात शत्रुन शत्रुन स्व प्रीतनासु संग्राम नाम सुपठितम कियंत संति संग्राम नामानि षड चत्वारिंशत्, प्रथम रण विवाक विघात नव विखाद, हाँ प्रीतना कुत्र वर्तते न वर्तते त्रिशु, तो रण विवाह विखाद नदनु भरे आकंदे आवे आ जाओ प्रीतना तत्र वर्तते। हाँ तो प्रीत ना नाम है, संग्राम है, वैसे आज जम भी सब साथ में पढ़ा है। दुढ़ है किंतु शत्रु है ना, बहुवचन है, तो मैंने शत्रु को इसलिए कहा द्वितीय। दुढ़ है, दुर्धीय और ये ह्रस्व था, बहुवचन में दुढ़ बन गया, सस है शत्रुन। तो देखिए वेद क्या कह रहा है कि यदि बड़े बड़े यज्ञ हम कर रहे हैं उसमें कोई आके हिंसा करने वाला है तो उसको क्या करें, हम उसके साथ युद्ध करें ताकि वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब दो चार आगे फिर उनको मार दिया, फिर और आगे फिर उनको मार दिया, ऐसे नहीं वहीं जाके मारो जहाँ से पैदा हो रहे हैं ताकि हमेशा के लिए सुरक्षा हो जाए। तो ऐसे मारे तो वनुष्यति का वेद में पता नहीं लगता कि ये किस अर्थ में, क्योंकि वनसन संभक्त हूँ, सीधा पता नहीं लगता कि मारने के अर्थ में, बांटने के अर्थ में मान सकते हैं। तो फिर अर्थ क्या होता कि वयम जयम प्रीतनासु, पहले तो संग्राम में जीत लें फिर उनके भाई बंधुओं को सारा सामान बांट दें, ये अर्थ होगा ना वनुष्यति, उनको तो मारो और फिर वही सामान बांट दो, तो ये अर्थ गलत हो जाएगा। उनको मारो दुर्धिया वालों को वेद में, और अंदर दुर्धिया पहले उनको मान लो। तो दीर्घ है प्रतत यज्ञम, विस्तृत यज्ञम अभिजिगांसति है, जो हमारे बड़े बड़े यज्ञ कितने होते थे भाष्य जी ने पढ़ा है, अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत, ये महाभाष्य का छठा सातवां वार्तिक कुछ है, अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत, यद्यपि अप्रयुक्ता दीर्घ सत्रवत लक्षणेन अनुविधेया, तद यथा दीर्घ सत्राणि वार्षतिकानि वार्षसहस्रकाणि च न च अद्यत्वे कश्चिदपि व्यवहरति, केवलं ऋषि संप्रदाय धर्ममिति कृत्वा याज्ञिका शास्त्रेण अनुविदते। मैंने नवान्निक पूरा याद किया था, आज तक याद है बहुत कुछ पढ़ते समय। तो अगर ये याद नहीं हो तो कैसे पता लगेगा ये दीर्घ यज्ञ क्या है, अगर मेरे को महाभाष्य का वचन याद नहीं है, कात्यायन सरोसूत्र याद नहीं कि ये दीर्घ यज्ञ है, तो मैं कैसे समझाऊंगा कैसे। तो अप्रयुक्त दीर्घ सत्वत शब्द क्या ना भाई, संति शब्द अप्रयुक्त, ये बात चल रही है कि भाष्य कह रहे कि शब्द है किंतु प्रयोग नहीं है, पेच है तेरे आदि जो उन्होंने दिया, तो कह रहे कि नहीं प्रयोग नहीं है। फिर आगे कहा कि सास मात्री है, चत्वारो वेदा सांगा सहरस एक सतम अध्वरी सा का पूरा घटना बताई है, उससे पहले की ये घटना है कि ये शब्दों का, जैसे आज ऋषि लोग क्या यज्ञों को लिखना छोड़ दें, हजार साल तक चलने वाले यज्ञ थे, कोई आज करता ही नहीं है, सत्र भी नहीं करता, तो क्या ऋषि लोग लिखना छोड़ दें, नहीं लिखना नहीं छोड़ना, कोई ना कोई आएगा, बताना नहीं छोड़ना, कोई ना कोई आएगा करने वाला। ऐसे ही अगर शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा तो उसको साहित्य में लिखना मत छोड़ो, कोई ना कोई उसको जानने वाला होगा। इसमें स्वामी जी महाराज दो विधियां हैं हजार साल तक चलने वाली, उसमें क्या है कि जैसे कल्पना कीजिए श्रीधर जी हैं, ये यजमान बन गए, अब ये यजमान बन गए, वैसे वहां वैदिक परंपरा में गृहस्थी ही यजमान हो सकता है प्राचीन यज्ञों में सोमयाग में, ये यजमान बन गए, तो अब इसके बाद में जो इनकी संतान होगी ये वृद्ध हो गए, 80 साल तक तो इन्होंने यज्ञ किया, क्योंकि 100 साल तो कम से कम पहले जीते ही थे, 20 साल की आयु में इन्होंने संकल्प ले लिया, 20 तो कम पड़ी, चलो 25 की में ले लिया, विवाह की अग्नि में ही यज्ञ करते हैं तो 25 साल तो होनी चाहिए। उसके बाद में लगा कि इनको मरने वाले हैं, तो वो यज्ञ का एक अलग से यज्ञ होता है कि इनको वो सौंप दिया जाता है अपने पुत्र को, वो जब मरने वाले होंगे वो उसको सौंप देंगे, वो मरने वाले होंगे वो उसको सौंप देंगे, ऐसे हजार साल तक चलाने का संकल्प करता था कि मेरी पीढ़ी आगे चलाएगी। ये नहीं, ये तो त्रिंसत वर्षाणी या यावत जीवत, इसके दो निर्वचन है कि त्रिंसत वर्षाणी 30 साल तक का संकल्प होता है या यावत जीवित अग्निहोत्रम जुई आती है, इसका वचन इसका नहीं, सोमयागों का, वो एक लंबी चर्चा है सोमयाग है क्या, 100 साल से ऊपर, 100 साल है, 200 साल है, 304 बस, सहस्र का तो ये हो गया ना, 100 से ऊपर जो है वो है, अगर हजार साल तक चलाना, सात वार सतिकानी वार सहस्रकानी, मैंने तो वचन बोला ना, वार सतिकानी 100 साल तक होने वाले और वार सहस्रकानी, बीच वाले तो अपने आप ही आ गए, अंतिम वहां तक का होता था। हाँ नहीं नहीं प्रतिदिन नहीं, अग्निहोत्र तो प्रतिदिन होगा ही, इष्टियां जैसे हम यहाँ दो चार आहुति दे लेते हैं ऐसा नहीं, 4 घंटे साध्यक, वैसे जब मैं सत्व ब्राह्मण पढ़ाऊंगा तो सुष्केष्टि करके बतानी ही पड़ेगी, कुछ ब्रह्मचारी जो हैं होता बनेंगे, कुछ अध्वर्य बनेंगे, मैंने कर चुका हूँ ऐसे मेरे को आती है। तो वो उसके बाद में स्वामी जी महाराज जब ऋतु ऋतु याजी, जैसे वसंत ऋतु आई, अगर ब्राह्मण होगा यजमान वसंत ऋतु आ गई तो तब वो सोमयाग करेगा, फिर चातुर्मास आ गए तब करेगा, और जो ये सत्र हैं ये फिर चलते हैं। सत्र का जिसने संकल्प लिया है फिर वो 12 दिन के बाद जो भी यज्ञ है उनका सबका नाम सत्र है। वो प्रतिज्ञा करता है कि मेरा 20 दिन का है, 100 दिन का है, 100 वर्ष का है, 1000 वर्ष का, फिर उसके अनुसार चलता है। वो ये भी संकल्प करता है कि मैं किस द्रव से, हमारे यहाँ नहीं कि सामग्री कभी किसी के लिए कभी किसी की, संकल्प करता है यजमान की यदि व्रीहिर भी यजेत यवैरवा, प्रतिज्ञा हो जाती है आधान काल में कि मैं आजीवन व्रीहि से आहुति देऊंगा, यानी पुरोड़ा जो बनाऊंगा मैं वो लाल चावलों का बनाऊंगा या जौ का बनाऊंगा, फिर उसी से चलेगा। कभी आप लोग खा के देखें यज्ञ के बाद में, यज्ञ कुंड में रख के पका के, इतनी ऊर्जा उसमें है पुरोड़ास में। मैंने तो जब इसका प्रयोग किया, इसका भी काफ़ी किया था, पुरोड़ास आप खा लेंगे ना ये रोटी वोटी खाना भूल जाएंगे। देवताओं का यज्ञ शेष है, वही खाने का विधान भी है वस्तुतः इस सामग्री की। वैसे तो क्योंकि यज्ञ शेष का विधान है तो सबको थोड़ी बाद में बांट देनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो इस बात को कह रहे हैं कि यज्ञ शेष जो नहीं खाता वो पापी है। हाँ, तो इसको थोड़ा थोड़ा बांटना चाहिए। तो इसलिए एक आहुति चावलों की जरूर होनी चाहिए, और उसको इसमें पता है आपको कितनी हजार गुना शक्ति बढ़ जाती है, जो आपने यज्ञ शेष जिसमें से चम्मच बार बार जा रही है आ रही है, और वो उसमें इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो आप देखें, हम मैं तो अब यज्ञ शेष ही लेता हूँ, जयपुर में भी प्राय ऐसा करता था जब मैं यज्ञ करता था कि दूध पीता हूँ तो दूध की आहुति दे दी, चावल खाएं तो चावल मिला के आहुति दे दी, उसी को मैं खाता हूँ यहाँ जब से आया हूँ, पहले भी जब जब होता था करता था। तो यज्ञ शेष खाने से जो ऊर्जा दिमाग को मिलती है वो अद्भुत है, इसलिए वो आप आधा चम्मच भी खा रहे हैं ना समझो कि 50 किलो से भी ज़्यादा की ताकत मिल रही, इसलिए इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये शेष मिले तो पुरानी को मैं बड़ी अंधश्रद्धा, राख को भी ये शेष के रूप में खा लेते हैं, यहाँ बची नहीं आपको वहाँ जो है ना यज्ञ शेष को भगदड़ मच जाती है कि भाई मैं राख भरूंगा, डब्बे स्टील के कमंडल लेके आते हैं, उसको बुझने भी नहीं देते और उसको प्रतिदिन पानी में डाल के पीते हैं। उनकी श्रद्धा, मैं कह रहा हूँ हमारी तो असली श्रद्धा है कि ये शेष खाना चाहिए, पर क्योंकि हम उसको खा नहीं सकते जो बांट रहे हैं, क्योंकि देवताओं को तो खिला देंगे पर खुद खाना मुश्किल है। और आगे चलें, क्योंकि देवताओं की पाचन शक्ति थोड़ी ठीक ठाक है। पाता पाता आप या नाम, ये मतलब वैसा नहीं है, तत्व ज्ञान है, ऐसा हमें करना चाहिए, देवताओं का यज्ञ शेष लेना ही चाहिए। तो दीर्घ प्रततम अभी जिगांसति, तो ये बड़े बड़े जो प्रतत यज्ञ हैं प्रकर्षेण तथा तनु विस्तार है, विस्तार युक्त है, कौन है वो, जो भाष्यकार ने कहा है इसकी हमारी चर्चा। अभी जिगांसति यो तम तस्मिन ये दुष्टार है दुर्धयः संति तान अभी जिगांसति, अभी जिगांसति नाम है अभिलक्ष्य हंतुम इच्छति, यो वयम यह अभी जिगा जो हमें मारना चाहता है, वयम तम जय में उसको हम मारे प्रीतनासु संग्रामेशु दुढ़्यम दुर्धियम पापधियम इतिवा, पाता पाप अकस्मात पाता अपेय नाम, अपेय नाम पाता, बड़ा विचित्र अर्थ है, पाप आने तस्मात पाता केसाम पाता अपेय नाम, अर्थात अपेयों से रक्षा करने वाला, हाँ जो नहीं करना उससे उसको यदि करते हैं तो वो कौन है, पाप है। हाँ, तो पाप आने से माना है तो जो पाप है कौन है, पाता अपेय नाम, अपेय नाम पाता, जो पीने के नहीं है उनकी रक्षा करने वाला है, मतलब आसुर शक्ति की रक्षा करने वाला, एक तो ये अर्थ है। अपेय नाम पातुम योग्य पेय और न पेय अपेय, अपेय नाम पाता मतलब जो खाने पीने की चीजें शरीर में आप डालेंगे उनकी रक्षा करने वाला, मतलब उनकी रक्षा करेगा, अपनी रक्षा करेगा, अपनी रक्षा करेगा आसुर शक्ति को बढ़ाएगा, ये सीधी बात है। और अच्छी चीज खाएंगे तो फिर पाता कौन है, किसकी किसको, पाता पेय नाम, अपाप पाता पेय नाम, जो पेय हैं जो खाने के लिए हैं, जैसे आज मैंने जो व्याख्यान में बताया कि भाई जो हमारे लिए अनुशासन है खाने पीने का, उसकी रक्षा कौन करेगा, वो सत्व होगा। और ये किसकी रक्षा करेगा, ये खान पान, असुरों की रक्षा करेगा। पापत्यमानो अवामेंग पत्तिति, पापत्यमान इनको खाता पीता हुआ अवांग एक पत्तिति, नीचे गिरता है ऊपर, ध्यान देने की बात है। पापत्यमान है इनको पीता और खाता हुआ, पाप को खाता पीता या व्यवहार करता हुआ अवांग एक पत्तिति। तो आप कैसे मतलब उन्नति का आधार कैसे होगा यदि हम पाप करते रहेंगे, तो नीचे गिरना होगा। और पापत्यतेरवा स्यात, और पापत्यते नाम है पुनर पुनर पत्ति, नीचे ही पत्ति थी पाप, उससे व्यक्ति बार बार गिरता है। होता क्या है देखो लोक में भी है भाई, एक बार पाप कर लिया तो फिर क्या मिल जाता है, छेद मिल जाता है संस्कारों को, ये दोबारा भी कर लो, एक बार चोरी कर ली क्या है, दोबारा भी कर लो, तो पापत्य है बार बार गिराता है, ध्यान रखना चाहिए। पापा बोलते हैं, हाँ हाँ, पापा और मामा, मम्मी भी अब मामा हो गई है शायद, मामा मम्मी हो गई है, मतलब मम्मी जैसी है वैसे तो, आजकल बच्चों को यदि संस्कार नहीं देती तो इसमें तो आप ठीक कह रहे हैं। तो
पापा मतलब बार बार गिरने वाला,
हाँ तो वो बार बार गिरता है और संतान को भी गिराता है, हाँ तो वो तो दुनिया कहती है, तो आर्य को तो पापा नहीं कहना चाहिए, तो पापा का तो पापी है,
हो गया पापा,
हाँ हाँ निरुक्त से हो गया, तो और भी ठीक बात होगी। हाँ और पुत्र पे फिर विशेषण लग जाता है, पुत्र ठीक नहीं तो कुपुत्र हो जाता है। तो ये तो देखो हम कुछ नहीं कह रहे, यास्क जी कह रहे हैं कि वो तो पापा का अर्थ ही है पापी, इसमें वही अर्थ है, और उन्होंने ले लिया होगा क्योंकि आजकल पापा भी प्राय बच्चों को श्रेष्ठ नहीं बनाना भी तो एक पाप है, और वो कर रहे हैं तस्माद वो पापा, है ना, ईमानदारी से नाम निर्वचन ठीक रखा है किसी ने। और आगे चले, तरुष्यति अपि एवं कर्मा, तरुष्यति अपि हिंसा कर्मा वर्तते, इंद्रेण युजा तरुषेम वृत्रम, इंद्रेण युजा नाम सहयोगी ने भूत्वा सहयोगेण तरुषेम हिंसेम कम वृत्रम, इंद्रस्य सहयोगेन वयम देवाः वृत्रम तन्नामकम असुरम तरुषेम हिंसेम तम नाशयाम इत्यर्थ इत्यपि निगमो भवति, ऐसा अपि निगम अर्थस्य बोधक मंत्रो वर्तते। भंदना कस्मात् भंदते स्तुति कर्मणे भदि अभिवादन स्तुत्यो, तो पुरु प्रिय भंदते धाम भी कवि, तो पुरु प्रिय समास बहुव्रीहि वा षष्ठी वा, कथम जायते अत्र बहुव्रीहि वर्तते वा षष्ठी वा वर्तते, अस्य को अर्थ इति, गौतम बहुव्रीहि कस्मात् बहुव्रीहय यस्य, अर्थात गोधूमान व्रीहय सन्ति तत्र गुजराते व्रीहि नाम वेदे व्रीहि, गुजरात में व्रीहि बोलते हैं, और श्रीमान विक्रम जी ने हमारे लिए अब की बार उगवाई हुई है, खाने के लिए आ जाएंगी दिवाली के बाद में, है ना, प्राकृतिक तरीके से वही खाने का वेद में विधान है। व्रीहि यवश्च भेषजौ दिवस पुत्रेव अमर्तव, ये मंत्र है, व्रीहि और यव जो है चिकित्सा है और द्युलोक के पुत्र हैं। व्रीहि यवश्च भेषजौ दिवस पुत्रेव अमर्तव, ये अथर्ववेद का मंत्र है, ऐसे नहीं बताता मैं कोई चीज, सब वेद से प्रमाणित है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और इसका पूरा विज्ञान भी है। यवे है प्राण आहित अपानो व्रीहि उच्चते, ये भी मंत्र है, दो ही शक्तियां चाहिए शरीर को चलाने के लिए, ना कार्बोहाइड्रेट चाहिए मैं, ना मिनरल ना विटामिन, इनकी मिथ्या कल्पना है सब, ये जिसमें वो खाने चाहिए, विटामिन खा खा के हम अंग्रेजी कंपनी की दवाई बिकवा बिकवा के देश को बर्बाद कर दिया, विटामिन खाने वाले हैं तो फिर ये रोगी क्यों होते हैं, विटामिन तो खूब खा रहे हैं। इंद्रेण युजा तरुषे में वृत्रम, इंद्रस्य सहयोगेन वयम वृत्रम तरुषे में एक वार्तादित, पुनः अग्रे कथम वर्तते बंधना, अर्थात कह वृत्रम ताड़ितुम शक्नोति, यह पुरु प्रिय भवति भंदते धाम भी नाम भी कर्म भी अस्थान भी, धामानी त्रयाणी भवन्ति कानितानी जन्मानी, तो भंदते स्तोति पुरु प्रिय बहु भी पुरुषु प्रिय पुरु प्रिय व पुरु बहव प्रिय यस्य स पुरु प्रिय तदे वर्तते बहुव्रीहि समास भंदते स्तोति धाम भी जन्म भी स्थाने भी कवि कवि नाम है क्रांति दर्शा भवति कवि कस्मात् कवतेर्वा क्रांति दर्शी भवति तिर्वा और जानात इतिवा कई चीजें जानवान भी कवि कहा है। परमात्मा सबसे बड़ा कवि है कौन से मंत्र में है कबीर मनीषी परिभु शेंभु। अब ये खुल जाएगी ना बातें कि कौन कवि कैसा विद्वान होता है परमात्मा के तुल्य तुलना है। पश्य देवस्य काव्यम न ममारा सबसे बड़ा काव्य कौन सा है पश्य देवस्य काव्यम न ममारा न जीर्यति ये मंत्र है ऋग्वेद का। पश्य देवस्य काव्यम देवता के काव्य को देखो कवेर कृति काव्यम कवेरिदम काव्यम कवे जातम काव्यम तो सबसे बड़ा काव्य जो है ना वो वेद है आदि काव्य ये तो बाद में रामायण आदि तो बाद में हैं। हाँ और एक और मैं जोड़ देता हूँ जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी अनुभवी वहां भी पहुंच जाता है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती ऐसी भी संसार में बहुत सी जगह है जहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुंचती तो अनुभव करने वाले वहां भी ढूंढ लेते हैं चीजों तो अनुभवी जरूरी है। और आगे देखें इत्यपि निगमो भवति ये भी निगम है अर्थस्य बोधक वर्तते स बंधना उदीर्यति प्रजावति इति स धामों से स्तुति करते हैं। अब सूर्य की स्तुति करनी है तो द्युलोक भी एक स्थान है सूर्य के जन्म को बताना पड़ेगा कि भाई सूर्य कैसे पैदा हुआ। इसलिए स्वामी जी महाराज किसी भी स्तुति के करने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं नाम स्थान और जन्म और जन्म का प्रयोजन ये चौथी और जोड़ लो कि वो बनाया क्यों है। अगर ये अष्टाध्यायी का वृद्धि राधे सूत्र ऐसे पढ़ाने लगे ना जैसे मैं आगे सत्र चलाने वाला हूँ कि ये बनाया क्यों है जीवन में भूल नहीं सकता इसको कोई इसलिए कितनी बार प्रथमार्थी पढ़नी और पढ़ा ली फिर भी भूल जाते हैं क्यों जी अष्टाध्यायी भी भूल गए वृद्धि राधे तो नहीं भूले ना तो इस मतलब स्मृति कुछ तो ठीक है। तो क्या है क्यों बनाया जब तक आप क्यों हर जगह नहीं जोड़ेंगे। अब आपने उसकी 50 सिद्धि करा दी भागे से लेकर वहां तक अचय सीतादि तक किंतु कहां क्यों इस सूत्र की अपेक्षा ही क्यों है ये दिमाग समझता है क्यों ये एक सिद्धांत है। दिमाग में कोई चीज अगर सुरक्षित रखनी है तो क्यों से हो सकती है क्योंकि दिमाग का वो अवयव सुप्त है रटवादी सिद्धि कल को भूल गया। क्या सिद्धि भाई काम आती है क्या क्यों कश्यप जी कहीं सिद्धि काम आती है क्या आपको संस्कृत में व्याख्यान देना है भागे शब्द को बोलना है तो व्याख्यान कैसे देंगे केवल पढ़ाने के काम पढ़ाते समय ही सिद्धि काम किए वो भी पहले पाद तक उसके बाद तो सीधा धातु और प्रत्यय हो गया। तो वो कैसे हमारा दिमाग समझता है कि एक बार में ही दिमाग किस सिद्धांत पे काम करता है कि गुरुकुल में इस पर विचार ही नहीं किया गया हमारी स्मृति कैसे दृढ़ रह सकती है। तो अगर ये आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होता है मैंने भी ऐसा पढ़ा नहीं क्योंकि परंपरा से मैंने पढ़ा ये तो पढ़ने के बाद अकल आई है कि ऐसा भी हो सकता है क्यों बनाया जब हर चीज पे क्यों तो पाणिनि ने सूत्र क्यों बनाया। अगर वो सूत्र का प्रयोजन याद रहा तो जीवन में सूत्र नहीं भूल सकते सूत्र नहीं भूलेंगे ऐसे 4000 सूत्र याद रहेंगे इसी तरीके से तो हर दिमाग तुरंत जाएगा कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय कौन सा काल ये ध्यान देने की बात कारक तो व्यक्ति प्रथमार्थी उंगलियों पे है फिर पुस्तक लेके थोड़ी पढ़ाएंगे तो वो तरीके हैं। तो क्यों तो स्वामी जी ने ठीक कहा कि धाम भिकार क्यों है भाई कैसे स्तुति करते हैं इसकी तो धाम धामानी त्रयाणी नाम इसका आदित्य नाम क्यों है इसका अश्विनी नाम क्यों पहली बात होगी। नाम स्थानी रहता कहाँ है जब तक हम उसको नहीं जानेंगे उसकी स्थिति पूरी कर ही नहीं सकते। स्तुति का अर्थ है गुणांतरधान स्तुति क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो गुण हमें अपन को उसके जानने और अपने अंदर भी घटाने स्तुति का मुख्य अर्थ है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना इसका क्या अर्थ है स्तुति का स्तुयते अनया पदार्थानाम तत्वानि जायन्ते वा इति स्तुति जिससे पदार्थ के तत्व का ज्ञान होता है वो उसकी स्तुति है। तो सारे कब पैदा हुआ इसकी आयु कितनी है कहाँ रहता है क्यों पैदा हुआ ये इस तभी उसकी स्तुति हो सकती है और हम उससे क्या लाभ ले सकते हैं ये मंत्रों में मुख्य है। मतलब ये जैसे हम मंत्र बोलते हैं इंद्रा श्रेष्ठानी द्रविणानी देही, इसका क्या अर्थ है? अर्थात आपको प्राप्त करने ही है और उसकी विधि है। तो ये इसलिए इसको धाम का अर्थ यही है कि उसकी सारी स्तुति तभी हो सकती है। अब एक व्यक्ति के बारे में सामान्य रूप से जान लिया तो क्या आप उसके बारे में दूसरे को बता सकते हैं क्या? पूरा नहीं बता सकते जब तक उसको पूरा ना जाने। तो पूरा जानना ही स्तुति है। स बंदना उदेरियति प्रजावती। स बंदना, बंदना नाम है स्तुति द्वारा व तृतीय वर्तते किम वर्तते? बंदना बहुवचने वर्तते स्तुतयः स्तुति व स बंदना स्तुतयः उदीरियति उद ईरियति। ईरियति नाम है प्रेरयति। और कथम प्रेरयति? उत्कृष्टम अर्थम प्रेरयति। उत्कृष्ट रूपेण, उच्च नाम ऊपरी भावे, ऊपरी भावे नाम है उत्कृष्ट भावे। और प्रजावती है, प्रजया तद्वान तद्वती प्रजावती, प्रजावती बंदना उदीरियति स। स के स ब्रह्म, उस जो स्तुति करने वाला है वह उत्कृष्ट रूपेण स्तुतियों को प्रजा वाली को या तो प्रजा प्राप्ति के लिए या प्रजा के संरक्षण के लिए करता है, इति अर्थ है। तो यहाँ बंदना का अर्थ क्या हुआ? स्तुति। हाँ, क्या बहुवचन? हाँ, क्यों? तो इस वो तो हो गई बंधना में, क्या तो हो ही रहा नहीं है बंधना में। ये बंधना जो है ना विसर्ग सहित है, क्या समझ रहे हैं आप? विसर्ग है या लोप हो गया? विसर्ग का लोप किससे हो गया? किसी को इतना भी नहीं पता विसर्ग का लोप किससे हुआ? इतने तो वैयाकरण होने ही चाहिए। अन्येन मद आहनो याहि तुयम। बंधना इसका क्या है मेरे में पता नहीं लगता। आहन शब्द है क्या? हाँ, ये वही है, वही सुक्त है जो पहले भी आया था एक बार। कौन सा? यम और यमी। अन्येन मत मम त्यक्त्वा अन्येन सह आहन। आहन नाम आसमंतात हनति यासा आहन, अर्थात पीड़ा करी यमी। हे यमी दुखदात्री आहन, अर्थात दुखदात्री यमी मम त्यक्त्वा अन्येन सह तुयम शीघ्रमेव याहि। अर्थात जो घटना वहां हो रही है, सूर्य और वो पृथ्वी आपस में एक विस्फोट हुआ, दोनों निकले हिरण्यगर्भ से। अब वो पहले भी ये मंत्र आ गया, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो वो उससे मिलना चाह रही है, तो वो कहते मेरा लोक तो बड़ा दूर है, मुझे तो बड़ा लंबा सफर करना है, तो और किसी के साथ चंद्रमा वंद्रमा जो है जो आपके आस पास रहेंगे उनके साथ शीघ्र ही जा, नहीं तो फिर बीच में टक्कर हो सकती है। नित्य घटना के बारे में कह रहे हैं। आसमंतात हनती, कष्ट दे रही है ना वो। कष्टदात्री जो है, दुखदात्री, कष्ट तो है ही कि अभी तो हम निष्प्रयोजन मर जाएंगे। भाई हमारा प्रयोजन था कि आपके अंदर तो मनुष्य उत्पन्न होंगे, सारा कुछ होगा, मैं वहां से प्रकाश दूंगा। हम अभी टकरा गए बनते ही, तो निष्प्रयोजन हो गया ना, इसलिए दुख होगा कि भगवान ने हमें किस लिए बनाया था, हम अभी टकरा गए। टकराना तो था 4,32,00,000 के बाद में, और पहले ही टकरा गए तो क्या होगा? तो इसलिए कह रहे आ हंसी मारते हुए के समान भाषमाणा, आपके बाण से चुभ रहे हैं मुझे, वचन है ना। इति असभ्य भाषणात आहना, असभ्य भाषण है। सभ्य नाम है साधु, उस काल के लिए कभी के लिए तो बहुत अच्छा भाषण है, ध्यान रखना। असभ्य क्यों कहा इसको? क्योंकि अभी ये साधु नहीं है, बाद में तो ये सभ्य हो जाएगा, नहीं है बाद में, तो इस काल में साधु नहीं है। सभ्य नाम है, वो तो सभ्य है, यहाँ क्या है वो? भाषा सह वर्तते थी सभा और तत्र भव सभ्य, दीप्ति गति के साथ में अभी यही है कि आप मुझसे दूर रहो। यहाँ तो अभी सभा बनी नहीं, साधु तो तब होंगे, सभा ही नहीं अभी तो। समानम भाति थी सभा और तत्र भव सभ्य, अर्थात एक दीप्ति है हमारी, एक गति है, उसमें रहने वाले तो हम सभ्य हैं। हमारी गति क्या है? मैं ऊपर जाऊं और आप इधर रहो, आप मेरे से दूर रहो, ये तो हमारी सभ्य है, नहीं तो मैं सभ्य ही। जिस प्रयोजन के लिए हम बने हैं उसके विपरीत चलेंगे तो हम क्या हैं? असभ्य। तो ये बात कर रहे हैं, सभायाम साधु नहीं है, ध्यान रखना। बिना निर्वचन के बात खुलती नहीं है। आहना इव भवति ए तस्माद आहन है, तो मुझे पीटती सी होती है, जैसे कहते हैं ना कि भाई तीर से चुभ रहे हैं हृदय में, तो ऐसी हैं। तस्म भवति ए तस्माद आहन से आती, इसलिए वो अच्छी प्रकार पीड़ा करने वाली है, आहंत्री है। ऋषि नदो भवति, और वेद में नद किसका नाम है? लोक में, लोक में नद का अर्थ है नाले। संस्कृत साहित्य में नद का अर्थ है एक तो नदी है, और उसमें गिरने वाले जो छोटे मोटे चीजें हैं लोक में साहित्य में क्या है? वो नद है। बहवाच नद्या गंगायाम गता गंगा नाम नाय बनता है। हाँ, और पहाड़ी भाषा में आज भी नदी प्रयोग होता है, जैसे गुजराती भाषा में व्रही, केवल उच्चारण में थोड़ा अंतर आ गया, वही बोलते हैं, तो वही वैदिक शब्द है। तो इसलिए जब मैंने आयुर्वेद पढ़ते समय खोज की सहदेव जी के माध्यम से कि भाई ये किस भाषा में, मैंने हर जगह फोन किया जहाँ भी मेरे मित्राचार्य थे कि मुझे व्रीही देखना है कि वो कैसा होता है, क्योंकि वेद में आया, अथर्वेद में उसको खाने से कोई रोग ही नहीं होता। तो फिर अंत में सहदेव जी को मैंने बात की, और कई वैद्यों से बात की, पता ही नहीं लग रहा था। तो सहदेव जी ने मगा गुजराती भाषा में व्रीही किसका नाम है, तो उन्होंने बोला व्रीही तो नहीं है, व्रीही है, मगर चावल का नाम है क्या? कह रहे हाँ उसी का नाम है। वो कैसे होते हैं, क्योंकि वेद में थोड़ा वो सूर्य से संबंधित है तो लाल होते हैं, तो वो बात बन गई, तो जांच हो गई कि ये ही व्रीही है। फिर हमने उगवाए, मंगवाए, खाए, तो वही गुण मिले जो उसमें, तो निश्चय हो गया कि ये ही व्रीही है, और वो खाते ही पच जाते हैं, इतने अच्छे भी ताकत बहुत आती है, भूख कम लगती है, ना उनको पचाने में समस्या है, ना दिमाग के लिए समस्या, बड़ी बुद्धि तीव्र हो जाती है। और आगे चलें तो ऋषि नदो भवति नदते स्तुति कर्मण, ऋषि कौन है? नद है वेद में, नदते स्तुति कर्मण, नदति नाम है स्तुति कर्म। नदस्य मा रुद्धत, मा और रुद्धत अलग अलग कर लेना, मा मेरे में एक ही है, मा रुद्धत काम आगत, नदस्य, नदस्य नाम है स्तोतारस्य, माम रुद्धत रोधनम इंद्रियाणाम निरोधनम कर्णस्य काम आगत, काम उत्पद्यत। अर्थात काम नाम दो प्रकार का काम है, एक तो सात्विक काम है और एक विनाशक काम है। सात्विक काम वो है जो निर्माण करता है, और जो उल्टी सीधी इच्छाएं हैं वो विनाशक है, वो भी एक काम रूप में साहित्य में माना है। यहाँ सात्विक काम की वेद में वार्ता है कि रुद्रत निरोधन करतु माम काम आगत आपनोति प्राप्नोति, कैसा? वैसा काम नहीं है जैसा होता है श्रेष्ठ निर्माण के लिए, मेरे अंदर कामना में कामना पैदा हो गई कि ये भी किया जा सकता है और ये भी किया जा सकता है, एक तो ये अर्थ है। अथवा जब नया ऋषि था, नया ऋषि नाम है, दूसरा मंत्र कौन सा ऋग्वेद का? नूतन ऋत है, भावी ऋषि। आप भावी भावनी संज्ञा तो वैयाकरण जानते होंगे ना, क्या क्या होती है? वो तो है, पर वो कैसे भावनी संज्ञा हम समझे? कश्चित, बिना भाष्य के भी कोई चीज खुलती नहीं है, वस्तुतः बात ठीक है। कश्चित कश्चित तंतुवाहम आह अस्य सूत्रस्य साटकम वय, किसी ने किसी से कहा कि भई ये जो सूत है इसकी साड़ी बनाओ। स पश्यति, यदि साठ को नैवातव्य, यदि साड़ी नाम ही है तो इसका मतलब उसको बनाना क्या? यदि साठ को नैवातव्य, वातव्यश्च साठ कश्चेति विप्रतिसिद्धम, यदि बुनना भी है और साड़ी भी है तो शब्द का निर्वचन ठीक। स पश्यति अस्य ऊते सति साठ का मिति संज्ञा भविता, तो वो भावनी संज्ञा है, अर्थात जो आगे ऋषि बनेगा तो वो अभी अपनी इंद्रियों पर निरोध करना सीख रहा है, तो उसको वो काम उत्पन्न हो गया, तो उसने उसको नियंत्रण में कर लिया, ऐसा कह रहे हैं। एक ये भी इस मंत्र का अर्थ है, जो नया ऋषि है। हाँ, नवीन ऋषि माले जो नए बनेंगे, अभी तो पढ़ ही रहे हैं, अभी तो अध्येतारा है। ऋषि तो जिसने तत्वों को जान लिया वो तो नया कहा, पुराना हो गया। नया क्या है? नूतनम संजात, नूतन, और जिसने तत्व को जान लिया, पदार्थों को जान लिया, ना उसके लिए कुछ नया है ना कुछ पुराना है, तो यहाँ भावनी संज्ञा ही माननी पड़ती है।
ऐसा भी तो कहते हैं जैसे व्याकरण पढ़े तो व्याकरण कहलाता है, ऐसे हाँ। वेद अध्ययन करते हो
तो वो फिर नए बनेगा ना, बना नहीं ना। अब जैसे मीमांसा जो पढ़ रहा है, तम अधेति वेत्ति मीमांसक है, कह के मीमांसक आते नहीं, तो मीमांसक कैसे हो गया? एक बार विक्रम जी और आपके सहयोगी कौन थे? वो अनुपम जी। अनुपम जी यहाँ 7-8 दिन रहे होंगे मीमांसा का जब पाठ चला था। मेरे को फोन आया, क्योंकि वो मैंने उनके लाल कपड़े उतरवाए थे, सफेद मैंने ही दिलवाए थे क्योंकि पढ़ने के लिए। तो उन्होंने फोन किया कि मैं अनुपम मीमांसक बोल रहा हूँ, यही मेरे को फोन किया। मगर भाई अनुपम को तो मैं जानता हूँ, पर अनुपम कोई मीमांसक है मैं तो नहीं जानता, तो आप कौन से मीमांसक हैं? कह रहे आपका शिष्य अनुपम मीमांसक बन गया है। मगर कैसे बन गया है? कह रहे मीमांसा को जो पढ़ने वाला वो भी मीमांसक है और जो जानने वाला। मैंने कहा मीमांसक अस्मात मेरे को ये बता दीजिए पहले, तभी तो मानेंगे आप। मीमांसा शब्द के अर्थ को भी समझते हैं या नहीं समझते? कह रहे नहीं नहीं आचार्य बलदेव जी ने भी कह दिया पढ़ने वाला भी लिख सकता है। तो फिर ऐसे कैसे मान लेंगे भाई? ऋषि तो एक उत्तम क्वालिटी है, भावी बनेगा तभी मानेंगे। तो यहाँ ऐसी जगह अब नाम रख दिए, तो भाष्य के निरुक्त में भी आया ना, पहले भी मैंने बताया था कि नाम रख दिया गोपाल। अभी तो उसको बच्चे को पैदा होते ही 10वें दिन में गाय का अभी नहीं पता, गाय है भी कोई दुनिया में? तो भाव सारी संज्ञा भावनी ही है क्यों जी? अब जो सैनिक है, जो युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है, युद्ध तो नहीं हो रहा तो योद्धा कैसे हो गया? जब युद्ध होगा, जब युद्धपन दिखाएगा तब योद्धा होगा। किसी ने तो युद्ध नहीं देखा, सेना से वैसे रिटायर हो गया, तो योद्धा कैसे हो गया? युद्ध में जो रहने वाला है वो योद्धा है। तो मतलब भावी संज्ञा जब युद्ध होगा तब ये योद्धरीपन होगा इसमें। तो सारी संज्ञा वो कहा था ना, वो बताया तो था सारी बातें कि भाई लंब चूड़ा, अभी तो उसका चूड़ा ही नहीं है तो लंब चूड़ा कहाँ से हो गया कि आगे होगा। तो सारी संज्ञा भावनी ही है। कहाँ पे? ऋषि में भावनी संज्ञा है, क्योंकि अगर वो ऋषि बन चुका है तो उसको काम नहीं आ सकता। अगर हम सामान्य काम की बात करें, सात्विक काम ले तो ऋषि को ही आएगा, सामान्य को तो आ ही नहीं सकता। तो सात्विक काम नहीं, कोई लोग व्याख्याकार इसका अर्थ उस रूप में करते हैं ताकि आप लोग इसको समझ जाए। बाकी ऋषि है तो काम का कोई मतलब ही नहीं, वहां तो फिर सात्विक इच्छा पैदा होगी। काम करता है का पुनः इच्छा, का पुनः या का पुनः चेष्टा, ये है भाष्य के बिना बहुत सी चीजें नहीं खुलती। तो व्यापार है मतलब विशेष विशेष रूप से कोई क्रिया कर रहा है, वही काम है। और कोई ऐसा अर्थ करते हैं, क्योंकि आप सोचोगे ये अर्थ करते हैं ये पता नहीं कहां से बता देते हैं, तो मुझे खोलना जरूरी है, तो वो फिर भावी ऋषि है। हाँ जी, हाँ जो स्तोता है जो ईश्वर को अभी जाना ही नहीं, स्तुति मात्र कर रहा, तो उसको तो हो गई, तब तो जान के बाद नहीं होगा अगर कोई ऐसा मानते हैं तो। बाकी तो इसका अर्थ सात्विक वाला ही है। और आगे देखें, संरुद्ध प्रजननस्य ब्रह्मचारिणे इति ऋषि पुत्र्या विलपितम वेद्यन्ते, इसका एक अर्थ और भी है। समरुद्ध प्रजननस्य, ये यस्य प्रजननम समरुद्धम अभूत तस्य ब्रह्मचारिणे विषे। अब ब्रह्मचारी कोई बन गया और कोई ऋषि पुत्री है कि वो तो ब्रह्मचारी बन गया भाई अब तो, और उसको संतान पैदा करने की इच्छा है तो वो रो रही है। इति ऋषि पुत्र्या विलपितम वेदयन्ते, इसका एक अर्थ ये भी है। तो ऋषि पुत्री क्या कह रही है कि भाई उसको तो अब इच्छा बची नहीं है, और मेरे को तो इच्छा है कि मैं कोई संतान पैदा करूं, तो वो ऐसा उसको वेदना हो रही है, क्योंकि विवाह तो इसने किया किंतु ये ब्रह्मचारी रह गया, तो ऐसा भी एक कल्पना है। अगस्त ऋषि, वो लंबी कथा है उस पे ना जाए, तो वो अगस्त ऋषि है और लोपामुद्रा उसकी पत्नी है। मंत्रों में भी ये मिलता है, ये नित्य पदार्थ है कि अगस्त को आगे कोई पदार्थ का निर्माण करना चाहिए था तो उसकी शक्ति कौन है? वो पत्नी है। ध्यान रखना वेद में जो पत्नी शब्द आता है ना, खूब पत्नी इंद्राणी आता है, तो इंद्र की शक्ति है, तो वो शक्ति कुछ आगे खूब शक्ति आ गई है, आगे कुछ करना चाह रही है, वो कहता है भाई निर्माण पूरा हो गया आगे नहीं करेंगे। तो नित्य पदार्थ में कोई इसको लोक में घटाएं तो ठीक बात है, अब जिसको तत्व ज्ञान हो गया वो कहाँ संतान पैदा करेगा, ठीक बात, और पत्नी को तत्व ज्ञान नहीं हुआ, सीधी बात है, इसमें भी घटता है क्योंकि लौकिक व्यवहार भी ये है।
व्यास के बारे में क्या प्रतिपादन
है जी? हाँ जी,
कुंती का जो कर्म था वो इतिहास का था, ये दुनिया भर के व्यास व्यास के
ना, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा जी, व्यास के बारे में तो व्यास तो ऋषि तो था, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है।
कुंती का कर्ण व्यास का था?
नहीं, वो तो सूर्य पुत्र था, वो था नियोग का जो एक विधान है ना, आपत धर्म था राजाओं का, उसमें तो व्यास के बारे में आता है, उसके बारे में तो नहीं आता। चलो वो अलग विषय हो जाएगा। यहाँ तो ये है कि भाई अगर आप, सीधी बात है, यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो इनसे आपको वो नहीं आना चाहिए। और ये भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि कोई कुछ भी चिल्लाए, कोई कुछ भी करे, आपको ब्रह्मचारी रहना है। ये भी एक बात है, क्योंकि संरुद्ध प्रजनस्य ब्रह्मचारिणम प्रति लोप मुद्रा कामयते, तो ये सीधी बात। न यस्य द्यावा पृथ्वी न धन्व न अंतरिक्षम न द्रय सोमो अक्ष, इसको कौन सा शब्द है, सोमो अक्ष। न यस्य, यस्य इंद्रस्य, ये इंद्र लिख लेना, यस्य कस्य, इंद्रस्य। किम इंद्रस्य महिमानम, यस्य इंद्रस्य महिमानम, जिस इंद्र की महत्ता को द्यावा पृथ्वी नहीं सहन कर सकते या पार नहीं कर सकते। न धन्व, धन्व अंतरिक्ष नाम में आया होगा है ना, हाँ आकाश भी है। न अंतरिक्षम, तो यहाँ फिर धन्व का अर्थ मान लो ना समुद्र मान लो, अंतरिक्ष आगे आ गया ना, न अंतरिक्षम, अंतरिक्ष भी नहीं पार कर सकते। न अद्रय, अद्रय पर्वत में भी और मेघ भी है। सोमो अक्षा, तो ये सोम अक्षा है, इसका क्या मतलब हुआ सोम अक्षा है, सोम एव अश्नोति तस्य महिमानम तस्मात सोम अक्षा, अर्थात इंद्र एव तम सोमम अश्नोत, सोमे अश्नोति व्यापनोति कस्य महिमानम इंद्रस्य तस्मात सोमो अक्षा। सोम है जो, जिससे इंद्र ताकत लेता है, इंद्र का भोजन, तो वो तो उससे ताकत तो रहे ही, क्योंकि उसी से उसको ऊर्जा मिलती है। और सोम कहाँ है वो मैं बार बार बताता हूँ, या लिख लीजिए बार बार याद न रहे तो, एस नक्षत्राणाम उपस्थे सोम आहित, ये मंत्र है ऋग्वेद का, एस नक्षत्राणाम उपस्थे सोम आहित, नक्षत्रों के उपस्थ में मध्य स्थान में सोम भरा हुआ है। आप आपो वही सोम, ये भी शतपथ ब्राह्मण का वचन है, उपस्थे एष नक्षत्राणाम उपस्थे सोम आहित, ये वैदिक सोम की बात है। उसके बाद में चंद्रमा वही सोम है, चंद्रमा सोम है, उसके बाद में आप है वही सोम है, आप है तत्व भी सोम है, झरने का जो पानी है आप, और पय वही सोम है, पय भी सोम है, और पूति का तृण, जो पूति तृण होता है उसमें भी सोम का कुछ अंश आज मिलता नहीं, और सोमलता वही सोम है। सोमलता जो आज नहीं मिलता है, जो भूमि पे थी वो मनुष्यों के लिए सोम वो था, ये देवताओं का सोम है जो अंतरिक्ष में, वो आज मिलता नहीं है, उसको पी के तो बूढ़ा जवान हो जाता है। सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि सोम का पान पेट भर के करा दे वैद्य जो है, और उसको एक द्रोणी बनाए, द्रोणी मतलब हमेशा ही पलाश की बनती है, ध्यान रखना, वैदिक भाषा में पलाश का पेड़ एक चिकित्सक पेड़ है, ब्रह्म वृक्ष है, तो उसकी एक नाव नौका बना लें, उसकी लंबाई चौड़ाई से उसको पिला के लिटा दें, पहले हफ्ते कीड़े निकलेंगे शरीर से, फिर दूसरे हफ्ते नाखून वाखून आँख वाँख की खाल वाल सब उतर जाएगी, तीसरे हफ्ते फिर ये गड़ा सड़ा मांस अलग हो जाएगा, हड्डी हड्डी रह जाएंगी, वैद्य उसको देखता रहे और उसको बेहोश रहेगा, उसमें एक औषधि बताई है कुछ दूध के मिला के उसके मुख में नाली लगा के देता रहे, चौथे हफ्ते से उसके नए दांत आने प्रारंभ होंगे, नए बाल आने प्रारंभ होंगे, और सारा एकदम जब वो उसमें से उठेगा तो 16 साल का होगा, मतलब 16 से 24 के बीच में, उसका नाम युवा है। ये शतपथ ब्राह्मण में थोड़ा है, सुश्रुत संहिता में पूरा इसका एक विभाग ही है कायाकल्प का। है अब पहले से पता ही नहीं, अब हमारे बहुत से विद्वान बूढ़े हो गए, उनको पता ही नहीं, तो उनको तो जवान करना पड़ेगा ना। तो ये विद्या है, पर क्योंकि हम अंग्रेजी से प्रभावित हो गए, अंग्रेजों ने सारा कुछ हमें सिखाया, आप लोगों को मेरे अनुसार से कुछ नहीं सिखाया, सारा लूटा है ना, तो अब व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ हो गया, अंग्रेजी डॉक्टर के भगो, अरे चूहों पे प्रयोग करके आपको दवाई खिला रहे हैं, कुछ तो शर्म होनी चाहिए, है ना। चूहे आप चूहे थोड़े, ये चूहों की दवाई मनुष्य पे कैसे सफल हो जाएगी। शंख पुष्पी ढूंढ ली, वो तो हम रोज खाते हैं, दूध में मिला के पीते हैं, वास्तविक ही है वो, जैसे आयुर्वेद में लक्षण है वही है। हमने खूब ढूंढी देव प्रकाश जी, और हमने हनुमानगढ़ के जंगलों से उखाड़ी, उधर बकरी और भेड़ भी खावे और हम भी उखाड़े, संघर्ष हुआ काफी देर तक क्योंकि इतनी जगह बची हुई थी, और उसके बाद में अपने हाथों से उसको बनाया, तैयार किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। संजीवनी तो आज जो खोजी है ना, घाव भरने वाली है, कायाकल्प वाली नहीं। कोई माने संजीवनी से कायाकल्प हो जाए ऐसा नहीं है, वो घाव भरने वाली खोजी गई है। जो सोम जो खोजा गया है वो पूतिक तृण जैसा है, मैं देख के आया हूँ पतंजलि में, सोम जैसा है, सोम की अनेक जातियां, असली सोम जिसकी पहचान बताई हुई है सुश्रुत में, चरक में, कि चंद्रमा से जिसका सीधा संबंध है, कि आज प्रतिपदा है तो एक पत्ता निकलेगा, वो कहाँ खोजा है। वो तो मैं आचार्य बालकृष्ण जी से देख के आया था, उन्होंने मेरे को दिखाया कि ये सोम है ना जी, ये तो सोम नहीं आयुर्वेद के अनुसार, वो तो एक ऐसी डंडी है जैसे पूतिक तृण दक्षिण भारत में जो होता है, मेरे को जो उन्होंने दिखाया था, कह रहे ये भी सोम है, मगर सोम ये भी हो सकता है, पर वो सोम नहीं है जिसका आयुर्वेद में विधान है। तो ये मिल जाए तो फिर देखो आचार्य जी कैसे बन जाते हैं, बाल वाला ये चश्मा थोड़ी लगाना पड़ेगा ना, बाल धोले बचेंगे ऐसे लगेंगे। एक समस्या और आएगी, अगर आचार्य जी 16 साल के बन गए पहचानेंगे कैसे, ये तो समस्या आएगी। ये कहीं जाएंगे मैं आचार्य सत्यवर जी, भाई कौन आ गया आचार्य सत्यवर, आप कैसे हो सकते हैं, तो आपको तो कहीं आश्रम में घुसना मुश्किल हो जाएगा सत्यवर जी के नाम से। ना अपने आप को तो जरूर पहचानेंगे, बुद्धि और तीव्र हो जाएगी, जल्दी पहचानेंगे। मुंजवान पर्वत कहाँ ढूंढो, सारा मैं ही बताऊंगा। सोम आपको पीना है, मुंजवान पर्वत में बताऊं। आगे चलते हैं, ये तो सोम की चर्चा हुई इसलिए थोड़ा बता दिया। न यस्य द्यावा पृथ्वी न धन्वे न अंतरिक्षम न अद्रय सोमो अक्षा, सोम ही क्या है, अक्षा व्यापनोति तम इंद्रम अश्नोति इति एके, तो सोमे एव अश्नोति इति एके आचार्य मनुते, अथवा इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है, सोमे एव अक्षा व्यापको यस्य जाता यस्य, सोम ही उसको जानता है, द्यावा पृथ्वी आदि नहीं जानते। अश्नोते इति एके अशुंग व्याप्तौ अनूपे गोमान गोभी रक्षा, अनूप में तो क्या है, अनूप नाम है अनुगत है आप, अनूप है गोमान जो गाय वाला है, गायों के द्वारा वो गो भी अक्षा, गायों के द्वारा वो अक्षा है, अक्षा नाम है व्यापक है सुरक्षित है, या क्षरण धातु है क्षरित है, वहां से खूब दूध प्राप्त करता है। और सोम दुग्धा भी अक्षा, और सोम क्या है, दूधों के द्वारा ही रक्षित है। जब सोम को पीने का जो विधान है ना, वो दूध में उबाल के पीने का विधान है औषधि की दृष्टि से, तो सोम जो है दूध में मिलाकर उबालने से उनकी कई गुना शक्ति बढ़ जाती है, और वो सुपाच्य भी हो जाते, नहीं भारी पड़ते हैं। तो सोम है दुग्धा भी अक्षा, तो सोम जो है दुग्ध के दुग्धे ने अभी अक्षा, दूध के द्वारा अच्छी प्रकार से, दुग्धा भी होना चाहिए वैसे यहाँ, अक्षा, अक्षा नाम है व्याप्ता संति, सोम दूध के द्वारा व्याप्त है, और कोई ऐसे माने तो पूरीता, क्योंकि सोम में रस निकलता है वो उसका दूध हो गया, जैसे ये गाय वाला चारों तरफ पानी भर गया है, या अनुगत आपम दो तीन तरफ तो मान ही लो, वहां जहां खूब घास होती है तो गाय के द्वारा क्या है, खूब खूब दूध निकल रहा है और खूब सेवन कर रहा है, उसके द्वारा रक्षित है। ऐसे ही सोम जो है दुग्धा भी अक्षा, उसके अंदर भी वैसा ही दूध भरा हुआ है। पूतिक तृण सोमस्य भावे पूतिक तृणान अभिष्णुयात, ये वचन मिलता है स्रोत सूत्रों में, वो उसमें मतलब ये लिखा हुआ है सोमस्य न्यंच, सोम का कुछ भाग उसमें है, वही बेल है, वही आचार्य बालकृष्ण जी ने मुझे दिखाई थी। सोम तो आज उस काल में भी अमूल्य था, आज तो मिल जाए तो अमूल्य कहे धीरू भाई को, और इनको ये जितने भी है मुकेश भाई, इनको पता लग जाएगी सोम है किसी रस दिया, तो आधी संपत्ति दे के भी उसका रस पीने के लिए तैयार हो जाएंगे, या नहीं, कंजूस होंगे तो फिर तो अलग बात है कि मर जाऊं पर सोम के लिए इतने पैसे नहीं दूं, कई ऐसे भी होंगे। आपको ही पता लग जाए कि भाई सारे ब्रह्मचारियों को यहाँ से खड़े करके कि जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको सोम मिलेगा, क्यों जी? तो पूरी ताकत लगाएंगे नहीं दौड़ने के लिए। तो यही है, आगे चलें। क्षियति निगमः पूर्व, ये क्या कह रहे हैं? हाँ यही है ना, क्षियति निगमः पूर्व। क्षियति ये निगम पूर्व है, निगम नाम है। क्षियति अर्थात निश्चयेन गम्यति बोधयति क्षी निवास गत्यो अस्य अर्थते, अर्थात क्षियति एक निगम वर्तते, अर्थस्य बोध को वर्तते पूर्व। पूर्व नाम हाँ, क्षरति निगम उत्तर इति एके, वो क्षरति धातु से बना है, ये एक आचार्य का मत है। मतलब वो जो अक्षा बना है ना, कुछ पूर्व आचार्यों का मत तो क्या है कि क्षी निवास गत्यों से बना है, और कुछ आचार्य का मत क्या है, क्षरति से बना है, मतलब झरता रहता है, और कुछ वो निवास के योग्य है। सो सोमो दुग्धेवी अक्षा का क्या अर्थ हुआ पुनः? सोम है दुग्धा भी, अक्षा नाम है, सोम दूध के समान झरता है। जैसे सोम दूध गाय के थन से झरता है, ऐसे ही बेल से झरता है। थोड़ा सा भी दबाते रस निकलता है, जैसे थन को दबाते दूध निकलता है। सफेद रंग का नहीं निकलता उसमें, हरे रंग का है। हाँ क्या, हाँ दबाने से ये भी पहचान होगी कि इतने मुलायम होता है। सोम कैसे बना? सूये अभिशवे तस्मात मनिन सूयते अभिशूयते ऐसे तत्वों में अभिशवती इतिवा, मनिन प्रत्यय हो गया मन, अच्छा सोम बन गया। सर्वे अनूपे गोमान गोभीर यदा क्षीयति, अब ये देखो अर्थ खोल दिया। अनूपे, अनूपे नाम है द्वीपे, गोमान गोभीर यदा क्षीयति निवसति, अब वहां क्या अर्थ होगा भाई? जब यहाँ क्या मर गया, यहाँ तो क्या होता है ना, मर जाते हैं पशु, क्या होता है जब सूखा पड़ता है तो कहाँ चले जाते हैं, जल वाले स्थान पे चले जाते हैं, तो वही उनका निवास हो जाता है गोपालकों का, वो घर नहीं आते। आपने देखा होगा हरियाणा में खूब इधर से गाय पहुंचती हैं, तो वो इदानीम गोभी अक्षा का अर्थ क्या हो गया, गोभी अक्षा नाम है निवसति तो कुत्र, हरियाणा, और वर्षा ऋतु राजस्थान। अतः सोमो दुग्धाभ्य क्षरति, वैसे ही सोम जो है दुग्ध से निकलता है, अर्थात सोम में भी वैसे ही क्षरण होता है। सर दुग्ध इव क्षरति, जैसे दूध झरता है थन से, वैसे ही वो भी झरता है। सर्वे क्षियति निगमायति शाकपुणी, और शाकपुणी कह रहा है कि भाई यहाँ झरना अर्थ नहीं है बल्कि क्या है, निवास अर्थ है। तो दुग्धा भी अक्षा, तो सोम दुग्ध के साथ निवास करता है और ये भी दूध के साथ ही निवास करता है अनुपदेश में। क्षात्रम इति क्षिप्र नाम है, आसु अतनम भवति, आसु शीघ्र में अत सातत्य गमने, तो जो क्षत्रिय है वो सामान्य रूप से उसकी गति नहीं होती, विशेष होती है मरने मारने के लिए युद्ध में। तो इस क्षिप्र नाम में पड़ा, क्षिप्र नामानी की अंत संति सु आसु हो क्या रहा है भाई, अब क्षिप्र नाम तक भी नहीं पहुंचे अभी, तो जल्दी पाठ कैसे हो रहा है फिर?
26
कौन कौन से हैं? नो मक्षु द्रवतो समीरा जीर्णी सूरता सोगनाश शिव त्रिसुम भ्रु आसु प्रासु तुझे तुझमाना तुझमाना सज्र साचिवत दुगत्तात स्तरणी वातंग्रह हो गए, हो गए पूरे। इति षड्विंशति क्षिप्र नामानि, मैंने कब याद किए थे? 2002 के अंत में, और अभी तक याद है। और आपने कब याद किए थे? तो अभी भूल कैसे गए? जबर में भी याद किए थे फिर भी भूल गए, तो काम कैसे चलेगा भाई? करेंगे देखो भाई, सबका करेंगे वेद पढ़ने से पहले, सबका जरूरी है। 40 दिन का हमारा पहले यही सत्र होगा, बुद्धिवर्धन और संशोधन सत्रम। नहीं नहीं, केवल पढ़ने वाले, भार्गव का कैसे, यहाँ कोई वैद्य बन के बैठे हैं कि उनके लिए, ये तो केवल उनके लिए है जो वेद पढ़ेंगे, हर किसी का थोड़ी कराएंगे।
इतना तो याद है कि आपको कभी याद
तो आगे चलो, आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया, क्षिप्र नाम है, षड्विंशति है। तो आसु अतनम भवती, आसु का आ हटा दिया है ना, और ऐसा मिला के क्षिप्र बना लिया, सी बना के। तो अतनम आसु अतनम नाम है, अत्य सातत्य गमनम भवती स पतत्री त्वरम, इत्वरम होना चाहिए, हाँ इत्वरम है, स्था जगत यत स्वात्रम अग्नि अकिरणोत जातवेदा, जातवेदा कस्मात बस। अब तो आगे जब आपने ईश्वरी ले लिया तो हमने तो सोचना ही बंद कर दिया, फिर आगे कुछ है ही नहीं, उसके बाद अंतिम अर्थ है वो तो आपने वही बता दिया, तो हाँ नहीं अंतिम अर्थ है ईश्वर, अब उसके बाद कोई चर्चा नहीं होगी। सह पदत्री, क्योंकि उसके बाद तो कोई जानने के लिए बचा ही नहीं। सह पतत्री नाम पतति सातत्यम गमनम करोति थी, पतत्री नाम शीघ्र पतनशील इत्वरम, पतत्री और इत्वरम दोनों अलग अलग हैं। तो पतत्री नाम पतनशीलम और इत्वरम नाम शीघ्रमे पतनशीलम, विशेष विशेषण ही मानने पड़ेंगे। पतत्री इत्वरम नाम शीघ्र गमनशीलम स्था, स्था नाम है, ये वो नहीं है भाई, क्रिया क्रिया नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, क्रिया क्यों नहीं है, यहाँ क्रिया क्यों नहीं है,
क्योंकि निघात होती
है, ये होना चाहिए स्थियते अत्रिति स्था, विच प्रत्यय होना चाहिए,
ये चीज तो रहा है, ये आते स्वरित होता
है, हाँ जी हैं, हाँ वही है ना, तो इसलिए उदात्त है ये, मतलब उदात्त है तो इसका मतलब ये क्रियापद नहीं है, और जब ये क्रियापद नहीं है तो इष्ठागति निवृत्ति धातु से ऐसा प्रत्यय हो जिसका सर्वापारी लोप हो जाए, तो वो विची है या कीप है, हाँ कीप लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ विचना मान के है अनुदात हो जाएगा या इत हो जाएगा, नहीं इत नहीं होगा क्या, अकारान धातु को कित प्रत्यय परे रहते क्या होता है, और धातु परे रहते, और हाँ तो फिर इसका मतलब यहाँ क्विप भी विची है, तो ये विच में नहीं होता कुछ, क्योंकि वहाँ क्विप नहीं है ना, कित्र चाहिए उसके लिए, कित या गित चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा प्रत्यय आया है, वो इसके बिना जानकारी नहीं होती, इसलिए अच्छा वैयाकरण बनना बहुत जरूरी है। स्थानाम है, हाँ स्थावरम पदार्थम व वृक्षम व पर्वतम व जो इस, हाँ और जगत नाम है गच्छति इति जगत, गमनशील चेतन जगत हो गया। यत स्वात्रम नाम है किम हो गया, शीघ्रम, क्षिप्र नाम में है ना किसको, तो खाल क्षात्रम नाम है क्षिप्रम, अग्नि अकर्णोत, अग्नि ने उसको शीघ्र बनाया, और वो कौन सी अग्नि थी, जातवेदा, जातवेद किसी का नाम भी था, हाँ देव गोपर जातवेद याद आ रहा है, कहाँ है आजकल वो, हाँ वो एक बड़े का तो पता है छोटे का पता, हाँ तो जातवेद, जाते जाते वेत्ती इति जातवेद, मतलब आदि सृष्टि वाली जो अग्नि है, जाते जाते बुद्धते इति, जाते जाते जान हो जाता कि अग्नि हो गई है, तो उस अग्नि ने क्या क्या किया, वो अत्यधिक गमनशील है, वो स्थावर और जंगम जो जगत है उसको शीघ्र ही अग्नि ने बना दिया, मतलब उस अग्नि के बाद ही ये सारा संसार बना है जो भी कुछ दिखाई देता है, और वो कौन सी अग्नि है, अग्निमीड़े वो पुरोहितम भी है, सबसे पहले वो उसी अग्नि की यहाँ बात है जिसके आगे जगत दोनों बने हैं, आदि अग्नि की बात है, इसलिए उस अग्नि को ही क्या कहा, जात वेदा, अग्निमीड़े पुरोहितम में जिस अग्नि की चर्चा है जातवेदा है,
जाते जाते उत्पन्न उत्पन्न वेदी है, जो चीज उत्पन्न वो जानती है।
जाते जाते ही मुझे क्या क्या बनाना है, बनाते बनाते जानती है, तस्मात जात वेद। वो तो परमात्मा अग्नि है, फिर वो अग्नि तो जान ही नहीं सकती सबको, वो तो अंतिम अर्थ है। अब ये है जाते जाते, जाते जाते नाम है उत्पन्ने उत्पन्ने सती वेत्ति, अर्थात कौन सा पदार्थ कैसे बन रहा है क्या है, सारा बनाते बनाते जानती है। और इसलिए सबसे पहले ईश्वर इसी अग्नि का आधान करता है, उसी का नाम है अग्निमीड़े होतारम। होता भी है वो, क्योंकि आगे सारे पदार्थों को बनाने का आह्वान उसको ही करने वाला है। रत्न धातनम रमु कीड़ायाम, आगे पदार्थ जो खेलेंगे ना, ये बड़े नृत्य कर रहे हैं परमाणु, बड़ा खेल रहे हैं, उसी का आगे वो निर्माण करेगी, इसलिए वो अग्नि है वो। इसलिए सबसे पहला मंत्र भी वो ये, बीच में कैसे बने बने पदार्थों के बारे में कैसे, इसी यज्ञ के बारे में कैसे चर्चा हो जाएगी वहाँ, ये कुछ तो वेद में क्रम से ज्ञान होना चाहिए ना, पदार्थों का व्यवस्थित विभाषा होती है वेद में, ये ध्यान रखना चाहिए। रितव रितव इज्जते, अब आप निर्वचन करना सीख गए, क्यों समय लगवाते हो? ऋतु क्या है, ऋतु का समात बताओ। री गति तुन प्रत्यय ऋतु इति सिद्ध्यति, ऋतु नाम है ज्ञान गमान प्राप्ति अनया भवति अस्मिन भवति इति वा। तो आगे सृष्टि नष्ट हो चुकी थी, अब दोबारा वहीं से प्रारंभ होगी, इसलिए वो ऋतु की भी है, क्योंकि सबसे पहले यज्ञ करने से पहले किसको बुलाते हैं, ऋतु का काम होता है ना, तो इसलिए उसको ईश्वर ने बुलाया है, क्योंकि ये जाके उसको करना, लंबी चर्चा है जी। हाँ जी, नहीं गति के तीन अर्थ तो सामान्य रूप से दिखते ही हैं, जो भी आप गति करोगे, अब यहाँ से आपको पाकशाला तक गति करनी है तो क्या अर्थ होंगे इसके, ये स्वाभाविक अर्थ है। नहीं प्रापण तो है ना ज्ञान, आपको पाकशाला कहाँ है ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो उधर पहुंच जाओगे। ज्ञान गमन, फिर आप पाकशाला, तो आपको ज्ञान हो गया, अगर चलने का सामर्थ्य नहीं है तो भी गति नहीं होगी। फिर प्राप्ति, पाकशाला में करोगे क्या, भोजन खाओगे। तो तीन अर्थ गति के हमेशा ही है, स्वाभाविक अर्थ है। विशिष्ट, जहां भी ऐसी चीजें आती हैं वो विशिष्ट चीजों के लिए कहते हैं। एक तो आपको प्राप्ति करनी है, किसकी, सामान्य चीजों की, और एक आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो सामान्य गति कैसे होगी, विशेष गति करनी पड़ेगी। तो जहां भी दो अर्थ बताते हैं, दो क्रिया साथ में आ जाती है, एक ही अर्थ में विशिष्ट अर्थ मानना चाहिए, साहित्याचार्यों का यही मत है। आगे चलते हैं, तो ये हो गया, तो ये हमें पता लग गया कि अग्नि कौन सी है, जात वेद है, कहाँ क्या कर रही है। अब आगे देखते हैं, ऊति अवनाथ अव रक्षण गति कांति, ये जितने भी 19 अर्थ हैं। अव धातु के कितने अर्थ हैं, और उसी धातु से बनता है, उसका हम कल निर्वचन करके बताएंगे कि ये मुख्य नाम ही क्यों है, ये कल का हमारा विषय होगा कि करेंगे। अच्छा जी करेंगे, अभी थोड़े देवत कांड हो जाए ना चीजों का, तो आप लोगों के दिमाग में सारा कुछ रहेगा कि ये देवता कहाँ है, अभी मेरे को जोर लगाना पड़ेगा जब उपस्थित रहेगा। तो देवत कांड के साथ में विचार है कि संध्या में भी एक उसी का जो देवता आएगा, वहां अग्नि आ गया, तो अग्नि वाला जो संध्या में मंत्र है एक उसको भी ले लें। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 19 नहीं है, 19 तो धातु के अर्थ हैं, जितने भी गुणवाचक पदार्थ हैं मैं कल सारे सिद्ध करने वाला हूँ। हाँ इसलिए तस्य वाचक प्रणव है, तो आपको क्या उच्चारण करना चाहिए, प्रणव 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 प्रणव, क्योंकि तस्य वाचक प्रणव है, व्याकरण भी लगा लो उसी अर्थ को कह रहा है, तस्य वाचक है प्रणव है, तो उस परमात्मा का नाम प्रणव है, तो आप ओम क्यों बोलते हो, तो प्रकर्षण स्तुयते इति प्रणव है, तो प्रणव 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 शब्देन, तो तस्य शब्दस्य नाम है प्रणव प्रणव प्रणव। आचार्य जी पता लग रहा होगा ना, व्याकरण के बिना कुछ खुल ही नहीं सकता, इसलिए मैं, मेरी ये तो प्रतिज्ञा रहती है, और जो ऐसा नहीं मानते फिर उनसे विचार किया जाता है। कोई भी योग दर्शन का अर्थ बिना व्याकरण के नहीं खुल सकता, किसी भी सूत्र का अर्थ अगर समझा है तो ठीक, नहीं समझा जिसने व्याकरण लगाया वही समझ सकता है। तस्य वाचक प्रणव एक सूत्र है योग दर्शन का, तो मैंने वहां रोजड़ में भी स्नातक सम्मेलन में ये बात रखी थी, शब्दार्थ संबंध नित्य होने से ही तत्व ज्ञान होता है। एक मेरा विषय था 10 मिनट का, बिना हो ही नहीं सकता, नहीं तो तस्य वाचक है प्रणव है, तो प्रणव है प्रणव प्रणव है। ओम क्यों है? बिना व्याकरण के पता नहीं लग सकता, बताएंगे कल चर्चा करेंगे, थोड़ी आगे चलते हैं।
वहां आपका नाम ही रख दिया था, सिद्ध शब्दार्थ
नाम ही रख दिया था। चलो ऋषियों के अनुसार नाम रखा अच्छा है। रथम यथा उत यथा रक्षार्थम रथात कोपि शीघ्रम आगच्छति एवं अस्माकं पुरुषतात अस्माकं यदा इच्छा वर्तते तदाएव आगच्छेत। ये कौन है? ऊतये अर्थात रक्षार्थम, रक्षा कस्य भवति? आत्मन है, तो सबकी हमारी आत्मा की रक्षा के लिए जैसे कोई रथ से आता है वैसे आ जाओ। अब हम तो चिल्ला रहे हैं हमें मार दिया गया, उसके बाद आए तो क्या मिला? पुलिस वैसे बाद में आती है ना, तो जब घटना हो रही है जब हमें रक्षा की जरूरत है तभी आए, बाद में आने से क्या फायदा होगा? तो रथ से आओ। तो ये अश्विनी ही होंगे, इंद्र इंद्र है ये। हाँ तो इंद्र जो है तुम जो है रथ से जल्दी आ जाओ। इंद्र का रथ कौन है? हरि इंद्रस्य, कहाँ का वचन है? इति 10 आदिष्टोप, ये आदिष्टोप योजना नहीं जरूर समझना है। हरि इंद्रस्य रोहितो अग्ने हरितादित्यस्य राशभैश्विनौ प्रिशत्यम रताम अरुण्य गावे श्याम श्यावा अजा पूछना भी है श्यावा शपितु विश्वरूपा बृहस्पते नियुतो वायु। इति 10 आदिष्टोप योजनानि, आदिष्टोप योजनानि ये 10 हैं। तो इंद्र का रथ कौन है? वही है, घोड़े भी वही है, रथ भी। रथ क्या है? रमणात रथ है, जिसके कारण व्यक्ति गति करता है, घोड़े कहें या रथ कहें। और जब वो उन घोड़ों को जोड़ लेता है, ये भी एक कथा है, वो उन घोड़ों को जोड़ता है तो फिर जिस पे जोड़ता है वो रथ हो गया। जैसे अश्व क्या है? रश्मियां हैं, सूर्य के जो रश्मियां हैं वो सूर्य के अश्व हैं, घोड़े हैं, पर वो किन पे जोड़ता है? वो आप तत्व पे ही जुड़ती हैं, तो आप तत्व क्या हो गया? रथ हो गया। ये अनेक घटनाएं हैं और आगे चलें। हरणशीला हरिय हरणे हरती सता, और द्विवचन में हरि हरी हरय, तो दो घोड़े हैं अकेला नहीं है। तो हासमान है इति उपरिष्टाद व्याख्या समय, हंसते हुए आगे बताएंगे कि कैसे हंसना है, हंसना भी सिखाएंगे। तो कहाँ बताएंगे आगे? हाँ तो वहीं देख लेंगे, तब तक पढ़ पढ़ के कुछ लगेगा कि हंसने का समय हो गया है। अतः पंक्ति इति पढ़ भी है क्या देना? पेन रखेगा कश्यप जी ने। पढ़ भी तो पढ़ भी इति व्याख्या में अत्र वम्र कहा पढ़ भी उप सर्पत इंद्रम, वम्रक अर्थात अयम वम उद्गिरणे है ना, तम करोति इति वम्रक, या तो कोई वामन अर्थ में है या जो उल्टी करने वाला, पहले दीमक के लिए भी आया था, दीमक के लिए भी पढ़ भी ये वम्रक आया था पहले, वम्रक अर्भक कुछ ऐसा आया था ना, वम्री। हाँ तो वम्री वही वम्रक बन जाएगा पुल्लिंग में। वम्रक इति अर्थात कोऽपि, वम्रक का अर्थ साहित्य में वैसे वामन अर्थ में भी है, छोटा व्यक्ति बोना अल्प पदार्थ। पढ़ भी नाम है पाप पाने से जैसे तैसे ये बनाया हुआ है, तो पढ़ भी नाम है पानई, पानई नाम है सोम पानई, सोम पान के द्वारा उपसर्पत गतवंत इंद्रम, सोमपान के बाद में वो इंद्र के पास गए, शीघ्र चले गए। वो कौन थे? एक ये वैसे कथा माने तो एक ये वामन राम के वम्रन राम के एक ऋषि थे, ऋषि नाम है प्राण विशेष, ये इंद्र के पास चले गए सोमपान पीने के बाद में। अर्थात इंद्र के पास जाना है तो इतनी तो ताकत होनी चाहिए, उसकी बात सुनने का तो सामर्थ्य हो, और तो सोमपान से ही इंद्र को भी ताकत मिलती है, इन्होंने भी ली। अथवा ऐसा होते हुए भी वम्र कह पड़ भी, अर्थात हे इंद्र तुम सोमपान अर्थम अस्माकं पार्श्वे आगच्छ, तेन हेतुना वम्रक उपसर्पत। वम्रक जो है इंद्र के पास, इंद्रस्य पार्श्वे अगात कि हे इंद्र तुम सोमपानम करणाय अस्माकं पार्श्वे आगच्छ। द्वितीय अर्थ एवमपि भवितुम अर्हति। यतो इंद्रस्य पानम सोमस्य पानम इंद्रयो करोति, अस्य एवमपि अर्थ भवितुम अर्हति। इंद्रम अर्थात इंद्रस्य पार्श्वे वम्रक पड़ भी केन प्रयोजन है सोमपाने, अर्थात हे इंद्र यूयम आगच्छ या तुम आगच्छ और सोमपानम कुरु तदर्थम उपसर्पत इति अर्थ द्वयम्। पाने इति वा स्पासने रीति वा, पाने इति वा पान के लिए पीने के लिए और स्पासने वा स्पर्शन के लिए, और स्पासन नाम है स्पर्शनम नाम है हाँ बंधनार्थम, बंधनार्थम नाम है कि हमें अपने कर्मों में बांध दो, हमारे जो काम है उसमें लगाओ उसके लिए, या सोमपान हमें कराओ या खुद करो उसके लिए। वस्तुतः तो जो हम सब बंधनों में बंधे हुए हैं, और अच्छे बंधनों में असुरों से बचने के लिए इंद्र के पास गए कि हमें आप बांध लो, नहीं तो वो तो बांध ही लेंगे। ठीक बात। ससम न पक्वम अविदत सुचंतम, ससम अस्य को अर्थ है न जायते अतिरुच्यते। ससम न उपमार्थे वर्तते ससम इव पक्वम, यथा ससम पक्वम वर्तते तथैव अविदत जातवंत सुचंतम दीप्तिमंतम। तो ये क्या है, ससम अस्य को अर्थ है स्वपति और सस्तीति दो स्वपति कर्माण कहाँ आया था, स्वपति सस्ती इति दो स्वपति कर्माण ये आया था इस सेन अर्थ में, दो धातु दोबारा भी वो आया था, अब फिर भी आप भूलोगे तो काम कैसे चलेगा। तो ससम नाम है स्वप्नम, न पक्वम स्वप्न इव अभिव्यक्तम। पक्वम नाम है पक्व चीज को कैसे कहेंगे जी, देवदत्त भोजनम पचति और पक्वम, अब क्या अर्थ हुआ इसका, देवदत्त भोजनम पचति और पक्वम भोजनम को अर्थ अस्य नहीं, पक्वम भोजनम अस्य को अर्थ है। विक्रम जी नहीं खा रहे, इनसे पूछ लेते हैं, पकावा भोजन खा तो नहीं रहे ना, हाँ तो पक्वम भोजनम इसका क्या अर्थ है, देवदत्त भोजनम पचती पक्वम भोजनम, हाँ वो क्या क्या किस शब्द से कहेंगे, तो आप धातु से धातु के अर्थ को कह रहे हैं, वो है क्या, भक्षणाय अभिव्यक्तम तस्मात पक्वम, अभिव्यक्त हो गया है जो पहले नहीं था। क्या कहा था शुरू में पहले पाद में, किसको याद है कितनी क्रियाएं होती हैं, वो भाव अलग है, ये जो भोजन बचाने के आरंभ से लेकर अपवर्ग पर्यंत क्या था वो वचन, पहला वचन याद नहीं होगा तो घटना इधर उधर की सुनाते रहोगे, उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम, उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम ये वचन था, ये याद होगा तो उपक्रम प्रवृत्ति, जब चावल धोने प्रारंभ किए थे चढ़ाए थे किए थे तो उपक्रम हो गया, और अपवर्ग नाम समाप्ति, तो समाप्ति को कैसे कहें, पक्वम भोजनम इसका अर्थ भी ठीक से नहीं बताया जा सकता अगर विचार ना किया हो। पक्वम भोजनम नाम है भोजन रूपेण अभिव्यक्तम, जो पहले नहीं था उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी जब तक वो पक रहा था, अब क्या होगी उसकी अभिव्यक्ति होगी, मतलब अभी तक व्यक्त कर सकते हैं कि पक्वम भोजनम नाम है अभिव्यक्तम भोजनम भक्षणाय, ये इसका अर्थ बनता है। नहीं वो भक्षण योग्यम भक्षणम, भक्षण के योग्य कहाँ था, यदि भक्षण के योग्य था तो आप चढ़ाए क्यों था उस पे?
जिस मूंग को हमने पका करके खाया वो हमारे लिए अभिव्यक्त है।
हाँ,
जिस मूंग को इन्होंने बगैर पकाए खाया इनके लिए अभिव्यक्त
कौन सा? तो वो तो उसकी बात चल रही है पक्वम भोजनम, भोजवन पक्वम जिसने पकाया है उसको कैसे कहेंगे, जिसने खाया तो उसके लिए फिर दूसरा है। जीवितम भोजनम, हमने तो मरा हुआ खाया अग्नि से और इन्होंने जीवित खाया, क्योंकि वो उग नहीं सकता, इनका उग भी सकता था तो इनको प्राण ज्यादा मिलेगा, तो उसका नाम है जीवितम भोजनम। पक्वम भोजनम नाम है भक्षणाय सज्जितम अभिव्यक्तम, पक्वम का यही अर्थ है। पक्वम देवदत्त अर्थात देवदत्त पक्वम इदानीम किम आसीत उपक्रम आसीत कदा पर्यंतम उपनयन संस्कार था, इदानीम से ऋषि संजात आवेद परिसमाप्त हूं तो इदानीम पक्वम देवदत्त अभिव्यक्त हो गया कि जिसके लिए वेदारंभ संस्कार हुआ था वो पूरा कर लिया। तो ये इनके सबके रहस्य हैं शब्दों के, और आगे चलते हैं। सस्नम हो गया ना स्वप्नम न पक्वम, यथा स्वप्नम पक्वम अभिव्यक्तम, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका पक्वम का अर्थ था अभिव्यक्तम, नहीं तो यहाँ घटा ही नहीं सकते। स्वप्न पक गया, इसका क्या अर्थ हुआ? स्वप्न पक गया उसके समान आ गया, और पकने में तो बड़ा अंतर है, गेहूं आ गया इसका मतलब गेहूं पक थोड़ी गया, खान बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं पक्वम और ही कुछ कह रहे हैं, ससम न पक्वम यदा स्वप्ने अभिव्यक्तम भवति पश्चात न भवति, क्यों जी सपने में जो सारी चीजें दिखती हैं अगर वो सारी सुबह उठते हो जाए, किसी की टांग कट जाती है, कोई समुद्र में डूब रहा है, कभी अंतरिक्ष में उड़ रहा, वायु का रोगी तो क्या है अंतरिक्ष में उड़ रहा होगा, और जिसका पित्त बड़ा हुआ वो अग्नि से जल रहा होगा, यही स्वप्न की पहचान है कि ये बड़ा हुआ है, और जिसको कफ बड़ा हुआ वो समुद्र में डूब रहा होगा और सुबह भी डूबे ही मिले, दिखते हैं ऐसे स्वप्न? नहीं तो आपको स्वप्न ही दिखते तो आप तो महायोगी हैं फिर, ये तो सारे प्रकार की वृत्तियों पर नियंत्रण है फिर तो, अगर स्वप्न दिखते ही नहीं है तो दिखने चाहिए ऐसे स्वप्न, तो शास्त्रीय गति है एक, या तो इतनी गहन निद्रा आती है कि महसूस नहीं होते उठने के बाद, स्वप्न दिखे भी दिखे ऐसा भी होता है कई बार, स्वप्न दिखते जरूर हैं। अच्छा तो गहन निद्रा आती है तो इसलिए वो दिखाई नहीं देते, बाद में याद नहीं रहते। तो यथा ससम न पक्वम स्वप्नम अभिव्यक्तम इव अविदत सुचंतम, ऐसे ही हमने उस दीप्तिमान को जान लिया जैसे स्वप्न में कोई चीज जानी हो, और प्रातःकाल उठने के बाद वो नहीं होती। हाँ तो ऐसे भी हो सकता है, अगर आप 2 बजे उठते हैं तो अश्विनी देवता आपके पास होने चाहिए फिर, तो वो भी 2 बजे उठते हैं। हाँ तो अश्विनी देवता का नाम ही बुद्धि बढ़ाना है। स्वप्नम एतद माध्यमिकम, एतद स्वप्न कहाँ रहता है? मध्य स्थान में रहता है। अब आप देख लो वेद में यदि स्वप्न आ गया या ससम आ गया तो उसको हमारा राप का नहीं है, वो रहने वाला एक पदार्थ है मध्यम स्थान में रहने वाला, जो हमारे अंदर सपने पैदा करता है, उस पदार्थ का नाम भी क्या है? रिक्शा वाला क्या हो जाता है? रिक्शा हो जाता है। तो वो मध्य स्थान के कारण आपको सपने आते हैं, मतलब उसका भी एक देवता है, शरीर में रहता है मध्य स्थान में, दिमाग में, दिमाग के भी मध्य स्थान है। ज्योतिर अनित्य दर्शनम, इसका नाम ज्योति भी है जो अनित्य का दर्शन है, ज्योति अनित्य दर्शनम, जो नित्य नहीं है उसका दर्शन करा। सपने में चीजें दिखाई देती हैं नित्य होती नहीं, गायब हो जाती हैं। एक बार तो क्या हो गया कि मुझे एक ऐसा सपना दिखा, मैं वो मंत्र पे चर्चा कर रहा था कि मैं सम्राट बन गया हूँ, है ना, मंत्र की वही चर्चा चल रही थी कि वे संसार का अब कल्याण कर देंगे, अब तो क्योंकि हम सम्राट पूरे संसार के बन गए हैं, और फिर तैयारी चल रही है कि किसको ठीक करना है किसको क्या करना है, तो सुबह उठा तो देखा तो मैं तो अपने सामान्य कमरे में रह रहा हूँ। तो मेरे को ऐसे प्राय आ जाते हैं जिन मंत्र पर मैं विचार बनता हूँ तो मुझे मंत्र वही ले जाता है, तो ऐसे आ जाते। कई बार ऋषि के सपने आते हैं कि मैं ऋषि बन गया हूँ, है ना, वो तो हमारे तो इंद्रजीत जी तो ये कह रहे थे सायकाल आए कि भाई आप जो है ना ये सपा चट मत रहा करो, आपकी चोटी भी काली, आप तो चोटी धोली होनी चाहिए एक तो आपकी, और आप दाढ़ी बड़ी बड़ी रखो, आप बूढ़े से लगने चाहिए, तब ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी तो लगता है कि 25-30 साल का नवयुवक है, किसी को विश्वास ही नहीं होता किसी ने पढ़ लिया। मैंने कहा मैं तो 40 का हो गया हूँ, कह रहे कोई मानता ही नहीं। तो इसमें मेरा क्या दोष है, या तो उसमें शास्त्र में लिखा हुआ है, या तो जटिलोवा मुंडोवा, तो जटिलो का तो अभी आचार्य जी की तरह सामर्थ्य नहीं है तो मुंडे ही हो जाते हैं, वो तो महान सामर्थ्य ही है उसके लिए तो, क्योंकि इतनी जल्दी इनको संभाल के रखना भी तो वो है ना। तो ज्योति नित्य दर्शन ज्योति क्या है, अनित्य दर्शन है, जो था नहीं था वो दिखाई देता है। तद इव एविदत, ऐसे ही वर्षा ऋतु में हमने कभी कभी ज्योति का दर्शन कर लिया, जैसे सपने में कर लेते हैं, पर वो अपने अंदर की तो नहीं किया, इसलिए वो अनित्य हमारे लिए। तद इव एविदत जाजल्यमानम, तो वैसे ही हमने उत्पन्न होते हुए ज्योति को देखा, ये ज्योति अनित्य है क्योंकि कभी कभी दिखाई देती है, सपने भी अनित्य हैं क्योंकि ये भी पूरे नहीं होते। हीन उपमाएं ध्यान रखना, ज्योति अनित्य है तो किंतु उसकी सत्ता तो है, और जो पदार्थ सपने में दिखते हैं सबकी सत्ता है ये भी ध्यान रखना, पर संबंध अनित्य है ये ध्यान रखना, जो भी समुद्र हमने देखा समुद्र भी है किंतु ये संबंध अनित्य है, पदार्थ तो वहां भी नित्य ही है। कोई कहेगा ये पदार्थ अनित्य है तो दिखाई कैसे दी, ऐसा नहीं है। डायनासोर दिखाई देते हैं आपको, पिछले जन्म में डायनासोर तो नहीं थे, लगते भी वैसे ही, वैसे तो ये थोड़ा वैसे हो जाता है, ऐसा बुरा नहीं मानना, शब्द अंतरिक्ष में चला गया और होंगे तो फिर इनको डरना चाहिए आपसे सबको, द्विता च सत्या सदया च शंभु। तो द्विता शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि द्विता च सत्ता सदया च शंभु, तो द्विता का अर्थ क्या है, द्विधम, द्विधम का क्या अर्थ है, द्विधम है जीने वाला, ये मार्ग ठीक है या लोक में द्विधा उसी का अर्थ होता है, अथवा द्विस्थानेषु भव द्विधा, दो स्थानों में जो होने वाला है वो पृथ्वी में भी रहता है अंतरिक्ष में भी रहता है, द्विलोक में भी रहता है अंतरिक्ष में भी रहता है, दोनों अर्थ हो जाएंगे, दो बार होने वाला, जितने अर्थ तद्धित के घट सकते हैं तो इनमें सब में घट जाते हैं, पर यहाँ कौन सा घटेगा बात उतनी, तद्धित के कितने अर्थ हैं इतना तो याद किया होगा पढ़ते समय, अगर मैं राष्ट्रीय कहूँ राष्ट्रीय तो इसके कितने अर्थ हैं, वो मत बताओ इकट्ठा गण के बता दो कितने अर्थ हैं, कितने अर्थ हैं, गणना की कभी कितने अर्थ होते हैं, तो कैसे पता लगे, तो आप सूत्र जितने याद है उतने सुना दो बाकी रह जाएंगे, कितने अर्थ हैं ये बहुत, और ये अर्थ वेद में घटते हैं सारे, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वेद में जितने भी अपत्यार्थ है ना तद्धित के वो सारे वेद में मिलते हैं, इसका मतलब ये उस पुरुष के लिए नहीं कह रहे, एक नित्य पुरुष की भी चर्चा है। तो द्वित गिन लेना जी सामान्य रूप से जो है वो 26 अर्थ है, सामान्य रूप से, विशेष अर्थ करेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। द्वेधम सत्या मध्यमे च स्थाने उत्तमे च शंभु सुखभू, तो द्वेधम सत्या, सत्ता उसकी दोनों स्थानों में है, स्वधया च शंभु, स्वधया नाम मध्यम स्थान में है और शंभु क्या है उत्तम स्थान में है, अथवा स्वधया नाम अन्येन सुखेन च, अन्य में भी उसकी सत्ता है और सुख में भी उसकी सत्ता है, क्योंकि हमें वो भी घटा लेना चाहिए, स्वधन नाम में पड़ा हुआ है और बल नाम में भी है, तो अन्य में भी उसकी सत्ता है और शंभु नाम है पीछे भी आया था, सम भवती इति शंभु, सम नाम है सुख नाम में पड़ा हुआ है और तम भवती तत्र भवती इति या तम ददाती इति शंभु, तो सुख को देने वाला है तो वो द्विलोक भी हो जाएगा और कोई व्यक्ति भी हो जाएगा, भोजन भी हो जाएगा आदि आदि। व्रह इसका क्या अर्थ है, मृगम न व्रा मृगयंते, व्रा नाम है व्रियंती ताड़यंती जानंती ये ते व्रा, व्रा नाम है व्याधस्य सेवका, अथवा जो सामान्य जना कोई सेठ है उसके यहाँ जो काम करने वाले हैं, जो शिकारी के साथ काम करने वाले हैं, वो जो है सारे व्रा है, क्योंकि वो आवरियंती उनको घेर के रखते हैं, ये काम करो और ये काम करो और ये काम करो, वो घिरे हुए होते हैं या घेर के रखे जाते हैं, इसलिए वो व्रा है। तो मृगम न व्रा यथा मृगम, मृगम नाम अन्वेषण करतारम, मृग का अर्थ वेद में शेर भी है, ध्यान रखना, मृग का अर्थ मृग नहीं है, मृगो न भीमा कुचरो गृष्ट, कहाँ आया था ये? नहीं माता जी वहां है, निरुक्त में भी आया था ये, हाँ मृगो न भीमा कुचरो गृष्ट, क्या अर्थ था इसका देखते हैं, याद रहा क्या अभी तक, परीक्षा भी दे दिए। न जो है यहाँ उपमार्थ में है, कैसे उपमार्थ में है, तो भीम मृग इव, हाँ तो मृगो ने भीमा कुचर चरती कर्म कुत्सितम, क्वयम चरती इति वा, याद है नहीं है, मृगो ने भीमा कुचरो गृष्ठा, गृष्ठा नाम है गिरी सेते, गिरी अस्थाई थी वा, गिरी में पर्वत पे रहने वाला शेर जो है ना ढूंढता रहता है, ऐसे ही ये भी, और पर्वा पर्वत है पर्ववान समुद्गीर्णो भवती थी, तो पीछे के याद रखें तो बहुत सी चीजें खिल जाएंगी। तो हम मृग का अर्थ ये ना समझ रहे ना कि जो लोक में मृग है, पूरा याद है आपको, तो याद तो रखना पड़ता है ना, याद है नहीं किया गया है, और क्यों किया गया है, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है, ऋषियों ने कहा कि भाई पुस्तकस्तु या विद्या पर हस्त गते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या, अब मेरे को याद ही नहीं होता तो मैं भी इसका अर्थ क्या कर देता, मृग का अर्थ यही है, हाँ तो रखना पड़ता है, और रखना पड़ता है, अगर आप इस सत्व अंदर पैदा कर लेंगे तो फिर होता है, देवदत्त काष्टम भिनत्ति और विद्यते काष्ठ कौश्यर्थ, तो इसमें क्या अर्थ में क्या अंतर हुआ, अर्थात एक स्थिति ऐसी आती है कि कर्म, हाँ तो ये कर्म ही कर्ता बन जाते हैं, अपने आप कहाँ सुरक्षित होना, वहां जाके हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते, किंतु सत्व बुद्धि जो है वो सत्व पे काम करती है, मन जो है ना वो सत्व पे काम करता है, और सत्व कहाँ काम करता है, वो हमारे आहार और आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि सत्य शुद्ध हो ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे सर ग्रंथि नाम, उपनिषद तो पढ़े होंगे ना वेदांत से पहले, हाँ मैंने जब ये पढ़े थे तभी ये संकल्प लिया था कि ऋषि ने जो लिखा है वो करना है, ऋषि ने लिखा आहार शुद्धि तो आहार शुद्धि करनी है, इसको पढ़ने के बाद ही मेरे को अकल आई थी, वैसे भी मैं पहले कोई ज्यादा चीजें नहीं खाता था, पर जब ऋषि कह रहे कि आहार शुद्धि होने पर ही सत्व की शुद्धि होगी, तो यहीं से प्रारंभ करें, आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं है, आहरियते इंद्रिय इति आहार, पांच इंद्रियां हैं उनके पांच विषय हैं, उनके जो आहार हैं उनकी शुद्धि आवश्यक है, क्या देखना है क्या सूंघना है क्या खाना है क्या स्पर्श करना है, तभी सत्य की शुद्धि होगी और फिर ये सारी चीजें खुल जाती हैं, फिर खोलनी नहीं पड़ती, काष्ठ विद्यते स्वमेव, अर्थात अभ्यंतरे हिरण्यमयेन पात्रेण योसौ आदित्य पुरुष, तो कब होगा वो, हिरण्यमयेन पात्रेण विद्यते, हाँ तो जब वो पात्र से हट जाएगा वही है, उसी का नाम है आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, दोनों का आत्मा परमात्मा की तरह संबंध है, उस मंत्र की व्याख्या ही है समझो, उसकी सीढ़ी बता रहे हैं कि ये हिरण्यमय पात्रेण से मुख किस पे ढका हुआ और वो कैसे खुलेगा, आहार शुद्धि अति आवश्यक है। और आगे चले व्राहो मृगमिव व्रात्या प्रेषा, प्रेषा नाम है प्रेषेण चलंती कार्यम कुरंती, प्रेषे भव प्रेषा, प्रेषा जात प्रेषा, प्रेषे कार्यम एषाम इति प्रेषा, प्रेष आदेश, चलो ये काम करो चलो ये काम करो चलो ये काम करो, वैसे जो सेवक हैं वो मृगम व्रात्या, उन्हीं का अर्थ खोला, व्रात्या नाम है व्रतात् पतिता, उनके कोई व्रत होते नहीं, व्रत होते तो ब्राह्मण बनते क्षत्रिय बनते वैश्य बनते, उनका कोई व्रत ही नहीं था, तो भगवान ने कहा जब तुमने कोई संकल्प नहीं लिया कोई योग्य नहीं बना तो क्या बन जाओ, वर्तात पतिता प्रात्य, तुम वहां गिरो नीचे, सेवा करो इन तीनों वर्णों की। तो मंत्र का अर्थ यह है कि मृगम इव व्राहा मृगयन्ते यथाह व्रात्यः सेवकः केचिद् मृगम अन्वेषयन्ति कि कुत्र कुत्र से तिष्ठति तद्वत् एव एते स्तोतारः मृगयन्ते पदार्थानां तत्वानि। जैसे ये स्तोता है, हीन उपमा है वैसे तो, कि वैसे ही ये भी पदार्थों के तत्व को खोजते हैं, क्योंकि मालिक की आज्ञा, और हमारा मालिक कौन है? ईश्वर। उसकी आज्ञा क्या है? आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविणम, ब्रह्मवर्चस, मह्यम दत्वा। तो ये उसकी आज्ञा, हमें वहां पहुंचना है। उसकी और आज्ञा क्या है? तम ऋषिम, हाँ। तो हम ऐसे ही, वो हमारा मालिक है, जैसे ये इसका मालिक है तो इसकी आज्ञा का पालन करता है, तो वृत्ति ठीक बनी रहेगी, नहीं करेगा तो भगा देगा, किसी और को रख लेगा। इसलिए अगर हम नहीं ऋषि बनेंगे तो कोई ना कोई तो बनेगा। और इसका अर्थ एक और भी है, तो जैसे धेनु है ना, धेनुओं के खोजते हैं कि भाई कहाँ गाय, कहाँ तक चरकाई, कब आएगी, उसका दूध निकालना है, ऐसे ही कैसे खोजते हैं गायों को? जैसे ये शेर को खोजता है। शेर को क्यों खोजेगा ये? कि आएगा, फसल का नुकसान करेगा, पशु को खा जाएगा, तो ढूंढ के रखो कि शेर कहाँ है और पकड़ो उसको। अथवा मृग को मान रहे हैं तो इसका मान नाम व्याध हो जाएगा कि ढूंढ के लाओ। तो ये तीनों अर्थ घट जाएंगे। वराह मेघो भवती वराहारह, तो वराह भी मेघो भवती। अब लोक में वराह किसका नाम है? शूक्र। और यदि निरुक्त नहीं पड़ा अच्छी प्रकार वेद में, क्या अर्थ ढूंढेंगे? अर्थ कितना अनर्थ हो जाएगा, है ना? तो वराह है मेघो भवती वराहार है, वराहार है नाम है, वरम उदकम तम आसमंतात हरतीति वराहार है, उदक को ग्रहण कर लेता है। वरम आहारम आहार्षी इति च ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण ग्रंथ में कहा। वरम आहारम, वर का अर्थ क्या किया है इन्होंने? आहार, आहार किया है। आसमंतात आहरणम, ये भी तो मेघ का आहार तो है, ये जो उसके पेट में रहता है। पेट में क्या रहता है? तो वो तो उसका आहार है ना, वो उसका भोजन भी है। वो नहीं है तो मेघ मेघ नहीं है, वो उसकी ऊर्जा है। मेघ किससे बनता है? जल से बनता है। तो जल क्या हुई? उसकी ऊर्जा हुई, यानी उसका आहार हुआ। इसका क्या अर्थ होता है? ताचा ताच शब्द, भाष्यकार ने कहा जो जिसके लिए, वो भी उस शब्द से कहा जा रहा है। रिक्शा वाले को भी, रिक्शा और वो दोनों एक थोड़ी है। तो जो जिसके अंदर है, जल उसके अंदर है, तो जल उसको जल भी कहा जाता है। जल जिसके अंदर है उसको भी जल कहा जाता है, लोक में प्रसिद्ध है। तो वरम आहारम आहार्षि, वरम नाम है आहारम, आसमंतात आहारम हरणम आहार्षि, उसने हरण किया। तो ये फिर पूरी क्रिया है शतपथ ब्राह्मण आदि में जो होते हैं ना, फिर ये क्यों इसको वरम कहा है? क्योंकि उसने आहार का हरण किया। और इसको भी क्यों वर कहते हैं? अग्नि को, क्योंकि ये भी उसका हरण करती है। तो फिर ऐसे घटना हुआ कई कई बताते हैं। हाँ, विद्यत वराहम तिरो अद्रिम अस्ता, वराहम विद्यत इंद्र, वराहम विद्यत वेद ताड़ने ताड़ितम इंद्रेण, और अद्रिम अस्ता, अद्रिम नाम है मेघम वा जलम वा अत्सा अस्ता, अस्ता नाम है छेपता होना चाहिए यहाँ, अस्ता अद्रिम विद्यत वराहम अद्रिम विद्यत, ऐसा होना चाहिए। अस्ता अर्थात वज्रस्य क्षेपता इंद्र वराहम अद्रिम, वराह रूपी अद्रिम मेघम विद्यत, और तिरह अद्रिम तिरह, फिर एक और अर्थ इसका आ गया अभी, अद्रिम तिरह, तिरह नाम अतिरथ या तिरम अद्रिम, टेढ़े मेढ़े वज्र को इंद्र ने जो फेंका ना, कि ऐसे ही फेंक दिया, जहां जाके लगेगा कहीं से टूटेगा, तो अद्री नाम उसमें पढ़ाया नहीं है वज्र नाम में, हाँ तो सीधी बात होगी। तो अद्री अतिरत अस्ता, फेंकने वाला उसने अद्री को फेंका, और वराहम विद्यत, फेंकने के बाद क्या फल हुआ उसका, क्यों फेंका, मेघ को तोड़ने के लिए। तो ये बात पूरी खुल गई। तिरह वज्र जो है ना कभी भी सीधा नहीं चलता, सीधा तो चलेगा ऊपर चला जाएगा, ऐसे जाएगा ना घूम घूम के। आप क्या समझते हैं सूर्य की रश्मियां कैसे आ रही हैं, ये भी ऐसी आ रही हैं, पीछे मंत्र भी आया था ना। तो उसमें ऐसे फेंका, मतलब ऐसे वज्र कभी भी सीधा चलने का तो अर्थ है कि या तो ऊपर चढ़ जाए या जिस गति में फेंका है ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, किंतु वज्र तो हथियार है ढूंढ के मारेगा। अब फेंका तो इस गति में और मेघ उस काल में कहीं दूर चला गया या ऊपर चढ़ गया, तब क्या करेंगे, तो ढूंढ के मारेगा। इसलिए कभी भी जो हमारे आयुध थे वो फैल नहीं होते थे, कहीं भी छुप जाए व्यक्ति वहीं जाके मारेगा उसको। हाँ, अयम पितरो वराहे तस्मादे, स्वर भी इसलिए है वृहति मूलानी, ये जड़ों को काट लेता है, और वरम वरम मूलम वृहति, तो जहाँ जहाँ श्रेष्ठ श्रेष्ठ गन्ने हैं उसको काट जाता है और काने काने छोड़ देता है। आपको पता होगा जो कभी जिन्होंने गन्ना उन्ने देखा है इनको ज़्यादा पता होगा कि वो कभी भी काने गन्ने नहीं खाता। स्वर जो है ना काने गन्ने हो जाते हैं ना जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं, उनको नहीं खाता, श्रेष्ठ श्रेष्ठ छांट छांट के खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। वहाँ तो हल्ला मचता है जिधर गन्ने के खेत है कि सुअर आ रहे हैं बच्चों बच्चों, गोली गोली चलाते हैं सुअर से डरने के लिए।
आलू खेत तो आलू
खेत खोद देता है श्रेष्ठ, उसको लगता है ना कि ये उसकी एक ऐसी मानसिकता और है मनोविज्ञानी के अनुसार कि उसको लगता है ना कि इसमें कम आलू मिले तो सारों को खोद जाएगा, मोटा वोटा उसके अनुसार नहीं मिला कि ना आपके और ना मेरे। पहाड़ों में तो बहुत हल्ला मचता है, जो शिमला के आसपास है ना बस जंगलों में सुअर खूब है, तो शिमला मिर्च तोड़ जाते हैं और आलू निकाल के खा जाते हैं, उनकी कीमत भी बहुत है। अब की बार हम जमीन देखने गए थे ना उधर, तो खूब घूमे 3-4 दिन में आचार्य सहदेव जी। हाँ, सुअर जो है ना मनुष्य को मार देता है, इतना खतरनाक होता है, अब मारते हैं फिर उनको। हाँ तो मारते हैं, उनके लिए प्रतिबंध वो रखते हैं, बिजली लगा देते हैं, उनको करंट लगता है तो दूर गिर पड़ते हैं। तो इसलिए वरम वरम मूलम, अरे भाई जब जो शूक्र है वो भी श्रेष्ठ अन्न का सेवन कर रहा है तो कुछ ज्यादा नहीं कहना है। वरम वरम विरहति इति वा, नहीं नहीं इन स्वरों की बात नहीं है, स्वर की तो खोदी हुई मिट्टी लाने की बात है यज्ञ में। ये ऐसे स्वर तो बाद में पाले हैं, जैसे भैंस बाद में पाली है तो जंगल में रहती थी, ये तो जंगली प्राणी है। स्वर कभी भी ये गंदी चीजें नहीं खाता है, वो तो बड़े औषधियों की जड़ों को खाता है, बड़े बड़े चीजें खाता है। नहीं नहीं ये तो हमने गाँव का स्वर देख लिया, विदेशों में चले जाए वहां कोई गंदगी थोड़ी खाता है स्वर, ये चीजें खाता है। स्वर तो जंगली प्राणी, अरण्य पशुओं में स्वर का नाम नहीं है, इसमें ग्राम्य पशुओं में अरण्य पशु है, जहाँ शास्त्रों में गिरा हुआ है ना कि सप्त ग्राम्य पशु है सप्त अरण्य पशु है, ये सप्त ब्राह्मण में आता है, उनमें स्वर नहीं है जो ग्राम्य अरण्य में है, ये तो हमने पाल लिया। भैंस भी उसमें नहीं है, ये भी अरण्य प्राणी है, दुर्योधन ने सबसे पहले दूध पिया था। हाँ? वो तो मिलावट है, शुद्ध कर देंगे सबको, आगे चलो। तो समझ में आ गया कि ये क्या है, और एक औषधि भी होती है वराहा नाम की, एक औषधि भी होती है जो जंगल में होती है, उस वो इतनी बलवान है वो व्यक्ति को मिल जाए तो कोई रोग ना बचे, सोम जैसी ही है, सूकर खाते बोलते हैं उसको, वराहा खाता, पर वो मिलती नहीं, सुअर उसको खा के उसी को खा के तकड़ा है इतना ही। वो पहाड़ों में जहाँ कहीं पहाड़ दल दल से होते हैं ना, जहाँ मतलब मिट्टी भी हो पहाड़ों में, वहाँ एक बेल होती है, वो एक बार मैंने कभी बहुत वर्ष पहले उसको देखा था और खाया भी था, तो बहुत ताकत है उसमें, और वो मूली की तरह होती है, कहीं पहाड़ों में मिल जाए कोई बेल तो जरूर लेके आना और खाना भी, मतलब मेरे को दिखा के ही खाना है, ऐसी कहीं सामान्य वाली हो उल्टा हो जाए। तो वो बहुत श्रेष्ठ बलवान औषधि, अगर वो आप लोगों को मिल जाए तो किसी का कोई कमजोरी शरीर में बचेगी नहीं। हाँ बिल्कुल, वराहम इंद्र, इसके दांत जो है ना वो बड़े, हाँ वराहम इंद्र एमुसम, अब इसका उदाहरण दे रहे हैं कि एमुसम नाम है आमुसम, अर्थात जलयुक्तम इंद्र वराहम हतवान, इंद्र ने जो जल से भरा हुआ आमुसम नाम है जलयुक्तम, मेघम अर्थात वराहम, इंद्र हत्वान अहन, ये क्रिया का अध्ययन करना पड़ेगा। अहन नाम है हत्वान, इंद्र ने उस वराह को मार दिया जिसके अंदर खूब जल भरा हुआ था। अंगिरसो अपि वराह उच्चन्ते, अंगिरस जो ये कैसे पैदा हुए थे इनको भी वराह कहा गया, ध्यान रखने की बात। अगर वेद में वराह आ जाए तो उसका नाम मेघ भी होगा और अंगिरा अंगिरस। ब्रह्मणस्पति वृष भी वराहि, जो ब्राह्मणों का जो पति है स्वामी है उस वो वृष भी नाम है, वर्षित्री भी वर्षते हुए के द्वारा, किनके द्वारा किसका विशेषण है वराही का विशेषण है, मेघों के द्वारा क्या किया उसने, नहीं कुछ और ही किया है, मंत्र देखो ये व्यानट क्रिया है, व्यानट नाम है व्यापनोत प्राप्नोत स्वीकृतवान। तो ब्रह्मणस्पति जो है वर्षा के द्वारा और जलों को उन्होंने प्राप्त किया, तो अंगिरस का अर्थ भी यहाँ मेघ है ना, वो क्योंकि ये भी ज्वालाओं से ही पैदा होते हैं और ज्वालाओं के बाद में क्या होता है, अंगारे भेजाए थे अंगिरा, अंगारे कौन थे, यहां से ज्वालाएं थी रश्मि, इन्होंने इसको उठाया और जब वो रश्मियां ठंडी होगी तभी तो बादल जमता है, ध्यान देने की बात है, बादल तभी जमता है जब वो ठंडी हो जाती हैं रश्मियां, मतलब जो लेके गए तभी जमता है, तभी बादल के रूप में हमें दिखाई थे, तो अंगारे भेजाए थे अंगिरा, तो ज्वालाएं नहीं थी उस काल में। अथापि एते माध्यमिका देवगणाः वराहवः उच्यन्ते, माध्यमिका देवगणाः मध्यमे स्थाने भवः देवानां ये समुदायाः सन्ति ते अपि वराहवः उच्यन्ते तेषां नाम अपि, तो के ते माध्यमिका देवगणा, मित्र वरुण इंद्र वायु अंगिरा अन्य च तत्र रसमयः अंतरिक्षः स्वप्नः भी आ गया, जितने भी ये बीच में रहने वाले हैं विद्युत, ये सारे देवगण जो है ना इनको भी वराह कहते हैं, क्योंकि इनके ये बिना जल के रह नहीं सकते, वहाँ जितनी भी घटना अंतरिक्ष में हो रही है जल के कारण ही तो हो रही है। पश्यन, अब ये एक विशेष बात है, इसका अर्थ ऐसे भी हो सकता है विज्ञान की दृष्टि में कि विद्युत को कैसे इकट्ठा करें, इस मंत्र में बताया जाए, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है, मेरे को उहा आई है, मैं आपको बता रहा हूं। पश्यन हिरण्य चक्रान, हिरण्य चक्रान, हिरण्य से चक्र हिरण्य चक्र, हिरण्य चक्र चक्रो यस्य स्वयं हिरण्य चक्र तान चक्रान, अयो दृष्टान लोहे के दांत हैं, अयो अयस दृष्टा दंता यस्य स अयो दृष्ट तान विधावत विशेषेण धावतान वराहून पश्यन देखते हुए। कहना क्या चाह रहे हैं, अगर आपको विद्युत को इकट्ठा करना है, कल्पना है, सत्य नहीं बता रहा हूं मैं कि ऐसा मेरे मन में आया, तो हिरण्य के तो चक्र बनाए बड़े बड़े, अयो दृष्टान लोहे के उसमें कीले लगा के रखें, तो मुझे लगता है कि ये जो विद्युत कड़कती है ये उसकी तरफ आकर्षित हो सकती है, मंत्र इस अर्थ को कह सकता है, मैं नहीं कह रहा, कह रहा है। अच्छा वो मुझे पता नहीं आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, मंत्र क्या कह रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि पश्चन देखते हुए हिरण्य चक्रान, हिरण्य के तो बड़े बड़े चक्र बनाओ, चक्र का क्या अर्थ है, गोल गोल चीजें बनाओ कुंड से बड़े बड़े जिनमें वो इकट्ठी हो, और उसमें अयो दृष्टान लोहे के दांत लगाओ, या तो उसके ऊपर ऐसी कील लगा दो घसकर, वो हो सकता है सोने को तोड़ पाती है, प्रयोग नहीं हुआ ना अभी, तो सोना एक ऐसी धातु है क्योंकि उसके अंदर जो है विद्युत के वो सोने के अंदर भी है, तो हो सकता है उसके साथ में सप्तपदीनम सख्यम आंतरीय है, आंतरीय है तो उसमें इकट्ठी हो जाती है, उसको ना तोड़ पाए, मंत्र तो इस बात को कुछ संकेत कर रहा है। तो अयो दृष्टान विधावतो वराहुन, जो ये दौड़ रहे हैं ना, टकरा रहे हैं आपस में, उनसे जो उत्पन्न चीज हो रही है उसको ऐसे लगाओ। ये तो है कि हमारी प्राचीन परंपरा में लोहे का तो विनियोग विद्युत से बचने के लिए किया गया है, किंतु वो पृथ्वी में चली जाती है तो किसी काम की नहीं रहती। अगर हम उसको सोने का ऐसा कोई बड़ा कुंड बनाए और उसमें अयोद्रष्टा लोहे की कोई बड़ी बड़ी कीले लगा दे ऊपर, तो वो हो सकता है उसको ना तोड़ पार, इकट्ठी हो जाए, निकलने का रास्ता ना छोड़े, ऐसा हो सकता है। मैं नहीं कह रहा ऐसा है, क्योंकि बिना प्रयोग के कहीं नहीं जा सकता, पर वैज्ञानिक को लिए एक नहीं हुआ हो सकते, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया आज तक कोई इकट्ठा नहीं कर पाए। और यह विद्युत वेद के अनुसार इतनी शक्तिशाली है, एक साल तक एक बरसात की विद्युत सारी ऊर्जा के काम करा सकते, इतनी भयंकर पावर है इसके अंदर। ना हमें पेट्रोल की जरूरत है, न फिर सरकार के जो कहते हैं ना मांस भेजना पड़ता है इसलिए डीजल पेट्रोल मिलता है, क्या जरूरत है हमें, ये टेंट में आ जाएंगे। पहले भी टेंट में रहते थे जब तक पेट्रोल और डीजल नहीं मिला था, जिस दिन वो खत्म हो गए टेंट में आ जाएंगे, या कोई नया आविष्कार हो गया। ये वायु है ना, सात प्रकार की ऊर्जा है, वेद मंत्र में लिखा हुआ है, पिप्यूसिम शब्द पदीम अरिम, सात प्रकार की ऊर्जा इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये तो निकृष्टम ऊर्जा मानी है, जो पृथ्वी के अंदर से पेट्रोल आदि निकाले गए, स्वाभाविक जो ऊर्जा, वायु भी एक ऊर्जा है, सूर्य रश्मि भी एक ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो बहुत अधिक मात्रा में वो भी एक ऊर्जा है, जल एक बहुत भयंकर ऊर्जा है, अगर इसका प्रयोग, इससे भी गाड़ी चल सकती है, क्योंकि ऊर्जा का प्रयोग किसी भी मशीन में हो सकता है। चला रखा तो अच्छा है, क्योंकि वो एक ऊर्जा है। पर हुआ क्या, क्योंकि गुरुकुलों में अभी इस प्रकार से पठन पाठन नहीं हुआ, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन चीजों को ऊर्जा के रूप में भी प्रयोग करें, प्रयोगशाला भी रखें, प्राचीन परंपरा वाली न कि आधुनिक। तो ऐसा कोई भी काम मेरी दृष्टि में असंभव नहीं है, कि ऊर्जा के प्रयोग ही तो करने हैं ना। मशीनें तो पहले से हमें, सबसे बड़ी बात है मशीन ही नहीं बनानी, इंजन हमारे पास पहले से है, अब सात ऊर्जा का उसमें विनियोग करना है, बस हमें उस तत्व को निकालना है जो ऊर्जा का सीधा विनियोग कर डाले, बस। हमारे पास तो सारा कुछ पहले से, कहाँ कहाँ से ऊर्जा मिल रही है हमें पहले से पता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। पर अभी तक आर्य समाज के इतिहास में क्योंकि ऐसा प्रयास नहीं किया, तो इसलिए लोग कहते सुई भी नहीं बनाई, पर ये असंभव कुछ नहीं, और हम इसको करके भी दिखा देंगे, कुछ दिन और रुक जाइए। वराह वराह व माध्यमिक देवगण, ध्यान देने की बात है, माध्यमिक देवगण इंद्र भी है, विद्युत भी है, मित्र और वरुण भी है, सब बहुवचन है, सारों को इकट्ठा किया जा सकता है। वराहून, इन्होंने वराह शब्द है, अब उसको बहुवचन में इन्होंने वराहून वेद में मिलता है, तो वराह क्या होना चाहिए था, रामान होना चाहिए था, तो वराहान होना चाहिए था, किंतु वराहून वेद में मिला उसी अर्थ में, तो इन्होंने रख दिया। तो ये एक कल्पना मैंने आप लोगों के दी, पहले चीजें कल्पना में होती है, सत्य बाद में प्रयोग के बाद हो जाता है, किंतु ये बात उसी को कह रहे हैं। माध्यमिक देवगण है, विज्ञान सीधा घट रहा है, हमें सबको पता है कि अंतरिक्ष में विद्युत रहती है, उसके बारे में चर्चा चल रही है, और वो हिरण्य चक्राण और दृष्टान दो शब्द आगे, तो ये क्या है, इनका संबंध हमें जोड़ना है। दिवो वरा हम अरुषम कपरदिनम, अब ये कह रहे हैं दिन को भी क्या है, वराह कहते हैं, दिन जो है उसको भी वराह कहते हैं। ससुराणी है क्या, अपने में तो देते नहीं, सीधे देते हैं। चलो दिवो वराहम अरुषम कपर दिन, ये कहाँ है,
ये नहीं दिए मूल में तो
नहीं है, नहीं है हमारे में तो है, तो ये तो वराह शब्द आगे में, तो इसलिए कह रहा है कि इसको भी कह रहे हैं, तो मुझे अपने वाला दे दो फिर एक। दिवो वराहम अरुषम कपर दिनम, ये नहीं है आपके यहाँ मंत्र, चलो फिर आगे इसको छोड़ ही देते हैं जब भाई नहीं। स्वस्राणी अहानि भवन्ति, स्वस्राणी कानि तानि अहानि भवन्ति, स्वयं सारिणी अपि इति वा, ये अच्छी प्रकार से सारिणी नाम है, हाँ, स्वयं एव सरन्ति गच्छन्ति, ये अपने आप जा रहे हैं, बढ़ रहा है। प्रातः काल जब हम बैठे थे कितने था, 9 बजे थे, अभी कितने हो गए, अभी सूर्य कहाँ था, अभी सूर्य कहाँ हो गया, सिर के ऊपर आने वाला है, तो स्वयं एव सरन्ति के भी दिन बढ़ रहा है, अपने आप ही बढ़ता है, सूर्य तो उसमें निमित्त मात्र है। बढ़ तो उसके कारण रहा है, बढ़ने का अपना तो उसमें सामर्थ्य, तभी तो बढ़ेगा। किसी में सामर्थ्य कोई कितने भी बढ़ा लो, बढ़ेगा कैसे? है कैसे बढ़ेगा? वो सीधी बात है कि सूर्य के कारण दिन बनता है, बढ़ता नहीं है। बनता जरूर है, बढ़ता नहीं है। दिन की अपनी महत्ता है कि वो खुद बढ़ता है। बच्चे को पैदा किया गया है, अब माता पिता कितने भी जोर लगा ले बच्चे को बढ़ने से नहीं रोक सकते।
दिन बढ़ता है,
दिन बढ़ता है। जैसे बच्चा बढ़ता, बच्चा बढ़ता या नहीं बढ़ता? बढ़ता। आप और हम बढ़े नहीं बढ़े, तो माता पिता ने बाद में बढ़ाए क्या हमें? हम खुद बढ़े, हमारे अंदर बढ़ने का सामर्थ्य। यही बात करें, अभी तो इतना ही है, बाकी तो आदित्य तो है ही। अब ये समझाना है कि वो स्वयं ही बढ़ रहे हैं, तो कैसे समझाएंगे? जैसे बच्चे बढ़ रहा है, भाई माता पिता के बिना बच्चा कहाँ है, इसका बताओ उत्तर। तो वो बच्चा बढ़ता है नहीं उसके बाद में, तो उसने तो दिन को निकाल दिया, अभी बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं, इनका इतना ही तात्पर्य। बच्चा कैसे बढ़ रहा है, उदाहरण दो इसका।
बच्चा तो बड़ा छोटा होता है वैसे।
नहीं, कैसे हो रहा है?
दाल चावल रोटी से।
तो ये भी बढ़ रहा है दिन प्रकाश से, ये इसकी दाल चावल रोटी है। संसारी नीति व स्वर आदित्य भवती व सहतानी सारी, वो अंत में आ ही गया। स्वर आदित्य भवती थी, वो आदित्य बढ़ रहा है, दिन नहीं बढ़ रहा, वही बात आ गई। हाँ, आदित्य भवती सहतानी सारी थी, वो इनको बढ़ाता है। किसी को सीधा समझ में नहीं आता, ऐसे समझ लो सरल भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति की अपनी, हर पदार्थ की एक सत्ता है, वो किसी के कारण बढ़ता जरूर है पर अपने उसमें महत्ता है, ये ध्यान देने की बात। ऋषियों के बुद्धि थी तभी तो चारों वेदों के विद्वान बन गए, पढ़ा उनके बुद्धि नहीं होती, परमात्मा चारों वेदों का जान दे देगा, तो बढ़े किससे? अपनी बुद्धि से बढ़े। उस्राय स्वस्राणी, अथवा इसका किसका दिया है, स्वस्राणी का दिया है क्या? उषा उस्राय स्वस्राणी दिनानी वर्धन्ते। जैसे उषा बढ़ती है, पहले बिल्कुल अंधेरा सा होता है, रात्रि जा रही है, लालिमा आ रही है, ये भी ऐसे ही बढ़ते हैं। इति अपि निगमो भवति। अब आगे शरीर अंगुलयो भवन्ति सृजन्ति कर्माणि। कर्मों को क्या करती हैं? सृजन करती हैं, इनके बिना कर्म बनते ही नहीं है। शरीर इचवा, ये शरीर किसको कहता है? ईशु। ईशु कहाँ? संध्या में, संध्या में मंत्र है ना ईशु के, तो ईशुभ्य क्या है ईश्वर के, वो क्या है? ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी, है क्या वो? उसका उत्तर दिशा से क्या संबंध है, पूर्व दिशा से क्या संबंध है, दक्षिण दिशा से क्या संबंध है, आदित्य अन्नम ईश्वर ये कैसे है, वो कहाँ है, वो दिशाओं से क्या संबंध है, बहुत कुछ जानना है। अच्छा फिर ठीक है। तो सृजंती कर्माणी सरयो ईश्वर सरमय, ये सरकंडे के बनते हैं, तभी तो होगा। तो सरमय नाम है श्री हिंसायाम, हिंसा एव धर्मो हिंसा एव सरमय, मयक प्रत्यय किसी अर्थ में होता है? अवयव भी होता है और विकार भी होता है, या तो हिंसा का अवयव है इसमें, या ये सर का विकार है। सर कहते हैं सरकंडा, नहीं एक लोह विशेष है, लोहे के ही बनते हैं, और वो भी लोह सामान्य तीक्ष्ण लोह बोलते हैं, जिसकी भस्म यदि कोई खा ले तो कम से कम 5 किलो वजन एक महीने में बढ़े और चेहरा हो जाए लाल। सरमय सर श्रीनाथ, ये हिंसा अर्थ में है, वो तीक्ष्ण लोह होता है, वो बहुत भयंकर होता है, कृष्ण लोह भी बोलते हैं, फौलाद अलग है। हाँ वही मारता नहीं, उससे बिना मरते नहीं, सामान्य बाणों से नहीं, उसको तो फिर कुछ औषधि विशेष है, उसको बुझाया जाता है उसमें, उसका भी शास्त्रों में वर्णन है जहाँ हथियार बनाने का है, कि कुछ औषधि जो विषैली औषधि है ना, उनको क्या किया, बाण को तपाया, उसमें डुबाया, इसको बोलते हैं भावना, बाण को डुबाया उसमें, अग्नि में बुझाया, ऐसे अग्नि में उसमें, तो वो 21 संस्कार होते हैं, तो वो सारा जहर हो जाता है उसकी नोक में, तो उसको उस वो कभी खाली नहीं जाता। ये आदिवासी आज भी इस विद्या को जानते हैं। सरयाभिर्न भरमाणो गभस्त्यो, सरयाभिमान नाम है, नाम है या तो ईशु भी या अंगुली भी, भ्रमाण नाम है, धनुर धार्यमान है, धार्यमान है या ध्रियमान है, गभस्ते नाम है बाहुओं के द्वारा, उंगलियों के द्वारा जैसे धनुष को धारण करते हुए आते हैं तो शत्रु नहीं दिखाई देते, ऐसे ही आप हमारे साथ बल के साथ में आओ तो ये इंद्र ही होगा, क्योंकि यहाँ बाण वाण मार, या फिर रुद्र भी हो सकता है। अवतत धनवा, क्या मंत्र आया था अभी तो कुछ दिन पहले आया था, पूरा मंत्र बताइए। अवतत धनवा, तीन भगनी भी है उसकी, कृतिवास है, और आगे बताइए। हाँ, उसके धनुष का नाम क्या था, पिनाक, पिनाक है हाथ में जिसके वो कौन है, और कृतिवास क्या है उसके, बताया था उसके कृतिवास भी हैं उस, हाँ वो कैसे हैं, कृतिवासा हैं, पिनाक हस्त है और अवतत धनवा है, वो कौन है, ये पहेली है, बताओ तो वो कौन है, वो रुद्र है। तो आगे चलें, अब आगे जो है पवित्रता की बात आ रही है, भाई ध्यान से ये विषय जो आगे आ रहा है ये बहुत ही है, अगर आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, मेधा बढ़ानी है, तो वो जो पवित्रता है, अन्न है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये सारी चर्चा आएंगी, तो इसको ध्यान से। अर्को अर्क एक शब्द है, न जायते अस्य को अर्थ, तो अर्को देवो भवति, अर्क कस्मात, देवो कस्मात, चार अर्थ तो निरुक्त ने बताए, धातु के कितने अर्थ हैं, देव कीड़ा विजिघोषा व्यवहार है, स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु, ये इतने अर्थ हैं, पता लग गया ना देवता क्या है, और मैं इसके अर्थ करूंगा तो 100 से ऊपर ले जाऊंगा, वो भी एक दिन करना बताएंगे कैसे करते हैं अर्थ। अर्को देवो भवति, अर्क क्या है, देवता है, देवता है नाम है, दाता है, प्रकाशित है, असुरों को मारने वाला है, खेलने वाला है और खिलाने वाला भी है, क्रीड़ा भी करा रहा है। विजी गीसा क्या है, जीत, देवता कभी हारता हमेशा जीतता, ध्यान रखना आप भी देवता हूं। अर्को देवो भवति यद एनम अर्चन्ति, क्योंकि लोग इसकी पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, देवता, मनुष्यों की पूजा, और कौन है, विद्वान सो वही। अर्को मंत्रो भवति, अर्क को मंत्र भी कहा है, यद अनेन अर्चन्ति, तो देवता का और मंत्र का अर्थ क्या हुआ, यद अनेन अर्चन्ति, यानी साधन रूप में आ गया, पहले कर्म रूप में था एनम अर्चन्ति, अभी वो कर्म क्या है ना, करण कारक बन गया, ध्यान रखना कैसे बन जाते हैं, किसके द्वारा लोग पूजा करते हैं, किसकी करते हैं, देवान। अर्कम अन्नम भवति, अर्क क्या है, अन्न भी है, अर्चति भूतानि, अर्चति नाम है, प्राणयति भूतानि, अर्चति का अर्थ है प्राणयति, लोगों को प्राणियों को प्राण देता है, इसलिए ये अन्न है। और अर्को वृक्षो भवति, अर्क क्या है, ये भी प्राण देता है, अर्क का अर्थ वेद में वृक्ष भी है,
अर्क का विशेष पेड़ विशेष नाम है,
वैसे तो अर्क वृक्ष विशेषो भवति, ये इसका अर्थ है, किंतु अर्क है वृक्षो भवति, जाति विशेष भी है, और जाति में जब कहेंगे तो सारे वृक्ष आगे, क्योंकि ये सारी घटना उनमें घट रही है, क्यों जी, इसकी पूजा करते हैं वृक्ष की, औषधि उखाड़ने से पहले पूजा का विधान है। अन्नम भवति, अन्न होता नहीं होता, अब यदि सेव बिना दवाई के पेड़ के मिल जाए तो धोने की भी जरूरत नहीं, पेड़ पे मुंह लगा के खा ले, ये सही बात है, अगर वहां तो कोई प्रदूषण होता ही नहीं, पूजा करके कह रहा हूं मैं। और इसमें घटकी वृक्ष विषय केवल अर्क के वृक्ष की बात नहीं रही ना, अब समी में आ गई, अर्क मंत्रो भवति यद अनेन अर्चन्ति, देवताओं की अर्चना समीधा ना हो तो किससे करोगे, वो भी इसमें घट गई। वृक्ष जब जाति विशेष में लेंगे तो वृक्ष मात्र है, किंतु वृक्ष मात्र में किसको किस वृक्ष की अपेक्षा उसके लिए पूजनीय है। आपको शायद पता नहीं, वृक्ष भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है और वैश्य है। चार प्रकार के वृक्ष शास्त्र में माने, भूमि भी चार प्रकार की, जो मिट्टी है ना ये भी ऐसी है। अभी तो मैं आपको प्रत्यक्ष कराऊंगा कान लगवा के कि देखो, और यहाँ की मिट्टी अन्ना सागर वाली मिट्टी के कान लगा के सूंगो और पहाड़ वाली को सूंगो। ये सही है, ऋषियों ने लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने उन शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं किया तो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है। अर्को वृक्षो भवति, अर्क क्या है, वृक्ष विशेष है या चारों घटना उनमें हो रही है तो सारे वृक्ष हैं। संवृत्त, संवृत्त नाम है संलग्न, उसके अंदर रखा हुआ है कटु किमना, कटु किमना नाम है, कटु एक रस है, कितने रस होते हैं, कौन कौन से, क्रम से बोलो, मधुर, मधु, स्वादु, पहले स्वादु और मधुर एक है, स्वादु, तिक्त, कटु, कषाय और अम्ल और लवण, तिक्त भी है। कटु आज जो मान लेते हैं ना, कटु और उसमें अंतर है। हाँ, कटु का अर्थ है चरपरा, जो मरीच है वो कटु है ना, लौंग है वो कटु है, पीपल है वो, इसलिए त्रि कटु का अर्थ है तीन बार कूट दिया, ऐसा नहीं है, त्रि कटु या कटवा यत्र, तीन कटु जहां मिला दिए गए हैं, पीपल, सौंठ और मरीच। और जो तिक्त है ना, ये बेल है, जो गिलोए, नीम है, ये कड़वे नहीं तिक्त हैं, उल्टा लोक में इसका अर्थ। हाँ, तो ये छह रस हैं, तो इसमें कटु रस होता है, किसमें, अर्क में,
कटु में,
हाँ कटु रस में, इसलिए कटु नाम है काटयति इति सतः, लवणम नाम है लुनाति छेदयति शरीरम इति लवणम, मधुरम मधु सदृशम, मधु मधु कस्मात, नहीं मुंह वचित से नहीं बनाया है, मधु शब्द किससे बना है, मधि हर से, जो पैदा होने के बाद में शरीर में जब आप खाएंगे और वो जो उसका पाक होगा तो आनंद उत्पन्न करता है, इसलिए देवताओं का भोजन मधुर रस ही आपके लिए, तिक्त और कटाई भी कसाई सारे जरूरी है, कड़वे कड़वे भी नहीं तो खून दूषित हो जाएगा, देवताओं को पचाने की शक्ति है इसलिए उनको कोई बात नहीं, कटु रस लेना चाहिए, गिलोय को रोज खाया करो, यहाँ लगी हुई है कहीं नीम पे कोई रोग नहीं आएगा। गायंती आगे किसको कह रहे हैं, गायंती त्वा गायत्रिण अर्चंती अर्कम अर्किण ब्राह्मणस्त्वा शतक्रतो, शतक्रतो होना चाहिए, क्रतु होना चाहिए, क्रतो ऐसे होना चाहिए, सतह क्रतो संबोधन में है ना, हाँ तो संबोधन में गुण हो जाएगा ना भाई, तो गुण वो होना चाहिए, वो कहाँ गया, लोप हो गया, तो हे सतह क्रतो, तो सतानी क्रतुनी यस्य, जिसके सो यज्ञ है, यज्ञ नाम में पड़ा हुआ है ध्यान रखना, और कर्म नाम में भी है, तो हे शतक्रतु, कहाँ एक हमारे मित्र भी थे, आजकल कहाँ है पता नहीं, सहपाठी थे महावाशी के, गुड़गांव में क्या, तो गायंती त्वा गायत्री ने, जो गायत्री ने त्वाम गायंती, गायत्री नाम है गायत्री, एसाम वर्तयती गायत्री ने, गायत्री जिनकी है वो गायत्री ने है, और गायत्री क्या है, गायंतम त्रायते, जो गाने मात्र से बचाती है, डरते नहीं गायत्री को, जब डरेंगे कि जब गान साम गान करेंगे, गायंतम गाते हुए को त्रा पालने रक्षणे तिवा त्रायते, जो उसका भजन करता है उसको जानता है, उसकी रक्षा करती है। ये किसने सिखाया आपको कि भाई उसको गाते हुए को डर जाते हैं, गायत्री एक साम गान है, गायत्रम, गायत्रम साम है, गायत्री छंद पे जो गाया जाता है वो गायत्रम साम है, उसकी बात चल रही है। साम गान रिच द्यूढ़ साम गीयते, ऋचाओं पे चढ़ा के साम, केवल साम वेद में 76 मंत्र अलग है, बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद के हैं, गान विशेष के लिए ले गए हैं। अर्चंती अर्कम अर्किण, अर्किण अर्कम, अर्कम अन्नम वा देवम वा मंत्रम वा और अर्कम वृक्षम वा अर्चन्ति पूजयन्ति। और ब्रह्मणस्त्व, ये ब्राह्मण कौन है, जो ब्रह्म से जो संबंधित है, वेद से जो संबंधित है, वेद पाठी या वेदज्ञ, तो यज्ञ कर्म को जो जानने वाले हैं, हे शतक्रतो उद्वंसम ये मेरे, उद्वंसम वंशम और तद उत्वर्तते, नाम है जैसे ऊंचा बांस होता है और उस पर कोई झंडा आदि टांग दिया तो उससे अलग ही पहचान होती है ना, कि भाई हमें पूछना नहीं ओम का झंडा लगाया यार, ओम में भी ओम और मैं ऐसा लिखा हो तो जानना चाहिए कोई आर्य समाज का ही होगा, फिर पूछना नहीं पड़ता ना कि आर्य समाज की संस्था है क्या। पुलिस ने ड्रेस पहनी हुई तो क्या होगा, पुलिस ही होगा, पर आजकल कई बार नकली भी पहन लेते, ये भी समस्या है। तो वो ये उद्वंसम ये मेरे, उच्छ्रितम वंशम उद्वंसम, जैसे किसी चीज को ऊपर रख दिया गया है और उसको ये मेरे नाम है वर्धयंती पूजयंती तिवा, जैसे उसकी पूजा करते हैं, झंडे की पूजा का तो वेद में भी विधान, पूजा का अर्थ है मतलब हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, पूजा का अर्थ नहीं, वही उसकी पूजा है। तो ऐसे ही जो गायत्री वाले हैं, गायत्र शाम को गाने वाले हो उसको गाते हैं, जो अर्कम अर्किण पूजयंती और ब्राह्मणस्त्व शतकर्तो ऐसे उठा के रखते हैं जैसे वैदिक लोग अपने झंडे की सुरक्षा करते हैं, ऐसे ये मेरे नाम है उसको बढ़ाते हैं अथवा उसकी रक्षा करते हैं या उसको दूर से ही पहचान करते हैं। गायंती त्वा गायत्रिण प्रार्चयंती ते अर्कम अर्किण ब्राह्मणस्त्वा शतकर्तो उद ये मेरे वंशमिव, और वंशम कस्मात, वंशो वन से यो भवति, वन में सोता है, और वननाथ श्रूयते इतिवा, और वन से अलग किया जाता है, अलग निकाला जाता है। तो ये आज हो गया, कितना बचा है समय, तो हो गया तो ये देख लीजिए अर्क क्या क्या करता है। तो अर्क की पूजा कीजिए क्योंकि ये प्राण देता है, यदि अन्य मंत्र की पूजा की गई क्योंकि इससे आप देवताओं की अर्चना करेंगे तो देवता अर्चना करेंगे तो देवता खुश होंगे और आप सभी को आशीर्वाद भी देंगे। अब मंत्र पाठ सुबह कौन सा करते हैं सबसे पहले, इसका क्या अर्थ है, हवा महे, हवा महे का क्या अर्थ है, हवम आह्वानम तद कुरुमहे, हाँ तो उसका हम आह्वान करते हैं, तो देवता किसी को बुलाओगे तभी तो आएंगे, पर वो आ तो गए, आप लोगों ने सामान्य तरीके से बुलाया तो आए भी नहीं होंगे, तो नींद में बहुत से तो नींद में मंत्र बोलते हैं तो देवता कहाँ आएंगे। तो यदि ठीक से बुलाया, मुँह हाथ धोके बढ़िया उनकी पूजा के लिए अपना भावना से बुलाया तो आएंगे। आने के बाद उनका कहाँ कहाँ विनियोग करना है, आगे दातुन भी करनी है तो दातुन में कौन से का विनियोग करना है, नहाने में कौन से का करना है, ये वो है पर आप जानते ही नहीं, तो फिर आके भी अनाए बराबर हैं। ओम यदि उठने के बाद अग्नि का क्या कर्म है, आपकी बुद्धि में आलस्य नहीं है तो समझो कि अग्नि आ गया है ना। इंद्र का क्या कार्य है, ऐश्वर्य, आपके पास बिल्कुल बढ़िया शांति लग रही है, बढ़िया दौड़ने उड़ने की इच्छा हो रही है तो समझो कि इंद्र आ गया। आगे कौन सा देवता है, मित्र और वरुण, यदि मित्र और वरुण, ये ध्यान देने की बात है, मित्र वरुण आगे नाम है आपको जल पीना है उठ के, मित्र वरुण जल के देवता है, वो उसमें पूरी घटना है कि आपको क्या क्या करना, और मित्र वरुण आने के बाद में प्राण अपान ठीक चलते हैं क्योंकि ये प्राण अपान के रूप है तो आपको पेट भी ठीक रहेगा। तो सारी चीजें ये ऋषियों ने ऐसे नहीं कि आपको लिए कि भाई उठा के मंत्र ब्रह्मचारियों से मंत्र पाठ कराना है बस ये उनका प्रयोजन है, वो आपको मनुष्य से देव और देव से ऋषि बनाना चाहते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, ओ सभी को साधन नमस्ते।